नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत, सबका स्वागत है रुक्मिणी मैया के जन्मदिन के उत्सव पर। तो उनका आविर्भाव है और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे जैसे तुच्छ प्राणी से सुनने के लिए भी आए हैं। तो अपना आशीर्वाद देंगे सभी वरिष्ठ भक्त। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करें, ज़्यादा तो आता नहीं है लेकिन फिर भी आदेश अनुसार ऐसे उत्सव पे बोलने का प्रयास करूँगा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति शब्दकांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंचाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरी तैयारी तो है नहीं कुछ भी, लेकिन हिजगे अमोघलापुर ने आदेश दिया कि बोलो, तो मैं रुक्मिणी माता जी जो है हमारी रुक्मिणी मैया उनके चरित्र पे बोलने का प्रयास करूँगा। वैसे तो बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है जिसको मेरे जैसे साधारण पुरुष नहीं बोल सकते हैं, परंतु वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का आशीर्वाद मिलेगा, तो आज मैं इस पर बोलने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी त्रुटि हो तो क्षमा करेगा। तो जो रुक्मिणी देवी हैं, जो कि हमारे एकमात्र पूरे मंदिर में विराजमान, पूरे दिल्ली एनसीआर कहें या पूरे भारत में कहें, एकमात्र यहाँ पर इस्कॉन केंद्र में श्री रुक्मिणी मैया का विग्रह है, बहुत ही स्पेशल रुक्मिणी मैया। तो हम हमेशा यही प्रश्न पूछते रहते हैं लोग, रुक्मिणी मैया है तो राधा रानी कहाँ चली गई, है ना। लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग रुक्मिणी द्वारकाधीश बोलते हैं, द्वारकाधीश के हाथ में बांसुरी कहाँ है। भाई जब वृंदावन छोड़कर के द्वारकाधीश द्वारका चले जाते हैं तो उनके पास सुदर्शन चक्र है, गदा है, धनुष है, सब कुछ है, आयुध लेकर के भगवान जा रहे हैं, परंतु बांसुरी नहीं है। और आप लोग राधा कृष्ण को हमको पेंट करके बोलते हो कि है ना रुक्मिणी द्वारकाधीश है। तो स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है, रुक्मिणी दुरावत्यम तु राधा वृंदावने वने। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं स्कंद पुराण को लेते हुए, कहते हैं जो स्थान वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का है, वही स्थान द्वारका में रुक्मिणी मैया का है। तो अब इसका मतलब क्या समझे, रुक्मिणी मैया और राधा रानी एक है या अभिन्न है। तो देखा जाता है कि श्रीमती राधा रानी सभी शक्तियों का विस्तार करने वाली आदि शक्ति है, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो उन्हीं से श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रकट होती है और लक्ष्मी देवी का एक स्वरूप रुक्मिणी मैया है। परंतु जिस प्रकार से वृंदावन में कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही द्वारका में भगवान रुक्मिणी के बिना नहीं रह सकते। कोई भेद नहीं है, एक है एक ही, परंतु जब वो अपने ऐश्वर्यशाली रूप में आते हैं तो वो द्वारकानाथ कहलाते हैं, द्वारकाधीश कहलाते हैं, और उनकी अंतरंग शक्ति रुक्मिणी कहलाती है। परंतु जब वो अपने बाल गोपाल, अपने गोलोक के रूप में होते हैं तो वो आदि भगवान कृष्ण कृष्ण कहलाते हैं, गोविंद कहलाते हैं, और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी कहलाती है। इसलिए ब्रह्म संहिता के एक श्लोक को जीव गोस्वामी कहते हुए कहते हैं, श्रियम कांता कांता परम पुरुषः। जीव गोस्वामी कहते हैं रुक्मिणी देवी राधा रानी का स्व अंश है। तो इससे ये तो बात हो गई कि ये दो नहीं है। लोग बोलते हैं अरे शादी तो करी रुक्मिणी से, प्यार किया राधा रानी से, ये क्या चक्कर है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं के लिए जीव गोस्वामी कहते हैं श्रियम कांता कांतः परम पुरुषः। जो परम पुरुष है, जो श्रीमती रुक्मिणी देवी हैं, वो श्रीमती राधा रानी का स्व अंश है, स्व अंश से प्रकट होती हैं। तो ऐसी रुक्मिणी मैया द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष वैशाख मास, जो कि अप्रैल और मई के महीने में आता है, जिसे मधुसूदन मास भी कहते हैं, इसी महीने में द्वादशी के दिन, जो आज का दिन है शुक्ल पक्ष, आज के दिन मोहिनी एकादशी के बाद, तो रुक्मिणी मैया का आज प्राकट्य दिवस होता है। इनके पिता का नाम भीष्मक, राजा भीष्मक है, जो कि विदर्भ के रहने वाले थे। अभी कई लोग विदर्भ जब पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते, तो मैं ढूंढ रहा था कि विदर्भ, वैदर्भ देश, जिसे वैदर्भी भी उनका एक नाम है, तो वैदर्भ कहाँ पड़ता है। तो बताया जाता है कि नागपुर और अमरावती के बीच के स्थान को वैदर्भ देश कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो उनका जन्म स्थान अमरावती माना जा सकता है। तो रुक्मिणी मैया का एक जन्म स्थान का मंदिर भी है अमरावती। जो लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो पता नहीं आपने देखा हो प्रभु जी, तो अमरावती में रुक्मिणी मैया का जन्म स्थान। तो ये जो वैदर्भ की रानी थी, इनके कई नामों से इनको बोला जाता है। वैसे तो इनके बहुत अनेकों नाम है, परंतु कुछ मुख्यतर नाम है। रुचिर नाना, इनका एक नाम है रुचिर नाना। रुचिर नाना मतलब जिनका चेहरा सुंदर कमल के समान खिला हुआ है। आपको कभी महसूस हुआ दर्शन करते वक्त रुक्मिणी मैया का चेहरा कमल सदृश खिला हुआ, रुचिर नाना। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द्वारका रुचिर नाना की जय, है ना। एक ना एक नाम है रुक्मिणी मैया का वैदर्भी, वैदर्भ नरेश के घर उत्पन्न होने वाली वैदर्भी कहलाती है। और एक उनका नाम है धीरा, जैसे बोलते हैं शिवजी को धीर बोलते हैं, ऐसे ही रुक्मिणी मैया धीरों की शिरोमणि धीर है, हमेशा धीर रहती हैं। तो जो भक्त भक्ति में धीर होना चाहते हैं उनको रुक्मिणी मैया के धीर स्वभाव को ग्रहण करना चाहिए, धीरता। तो अभी हम लीलाओं में सुनेंगे कैसे मैया अपनी धीरताओं को हमेशा कायम रखती हैं। इसलिए वेरी सोबर पर्सनैलिटी कहा जा सकता है, शी इज वेरी सोबर धीरा। और उनका एक नाम है कुलवती। कुलवती इसलिए क्योंकि अपने कुल का नाम रोशन करने वाली हैं, इसलिए उनको वैदर्भी भी कहते हैं, वैदर्भ में पैदा होने वाली कुलवती, कुल को रोशन करने वाली, जिनका कुल बहुत अच्छा है। और उनका एक नाम मोहिनी, मतलब कि आकर्षक करने वाले, आकर्षण करने वाले। इसीलिए मोहिनी एकादशी के दूसरे दिन उत्पन्न होती है, कौन? मोहिनी। और एक भगवान विष्णु का अवतार भी है, मोहिनी, मोहिनी स्वरूप। लेकिन ये वो मोहिनी नहीं है, ये मोहिनी उनकी अंतरंगा शक्ति है, मोहिनी एकादशी के बाद उत्पन्न होने वाले। इसलिए जब भगवान कृष्ण पहुंच गए थे द्वारका में उनको ग्रहण करने के लिए, तो वहां के सारे लोग जो विदर्भ के ब्राह्मण थे सब एक श्लोक उच्चारण करते थे, कहते थे अस्या एव भार्या भावितुम रुक्मिणी अर्हितम न पुरा असो अपि अनवध आत्मा भेष्मया समुचितः पति। अस्य एव, ऐसी जो एकमात्र स्त्री है जो धीर है, गंभीर है, रुचिर नाना है, चमकता हुआ चेहरा है, मोहिनी है। अब मोहिनी को कंपैरिजन करने के लिए कौन होना चाहिए, कंपेनियन कौन होना चाहिए? जो खुद आकर्षक हो। सर्व आकर्षण करती इतः कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर सकते हैं मोहिनी को वही धारण कर सकते हैं। इसीलिए विदर्भ नरेश के लोग कहते हैं, विदर्भ देश के, अस्य एवं भार्या भावितुम, एक ही है इनकी पत्नी बनने योग, रुक्मणी अहितम न अपरा, रुक्मणी के अलावा इस संसार में और कोई नहीं हुआ जो कि क्या कर सके, ओ भगवान कृष्ण की पत्नी बन सके। असो अपि अनवधम आत्मा भस्म समुचितः पति, और ऐसे को जरूरत है कि उसको कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो। तो जो राजा भीष्मक थे उनके चार पांच पुत्र थे, पांच पुत्र और एक पुत्री रुक्मणी। तो पांच पुत्र जो थे उनके नाम है, पहले बड़े भाई का नाम है रुक्मी जो सबसे बड़े थे, उसके बाद थे रुक्मरथ, हमेशा रथ पे सवार रहते थे रुक्मरथ, है ना। एक थे रुक्म बाहु, बाहु बड़ी बलशाली शक्तिशाली थे रुक्म बाहु, और एक थे रुक्मकेश, उनके केश बड़े सुंदर थे रुक्मकेश, और एक थे रुक्ममाली जो परिवार का पोषण कर रहे थे रुक्ममाली। तो इस प्रकार से ये पांच पुत्रों में से रुक्मी सबसे शक्तिशाली और सभी आयुधों से युक्त और बहुत ही अपनी बहन से प्रेम करने वाले। तो उनके घर में एक पुत्री उत्पन्न हुई, उनकी बहन रुक्मी की बहन भीष्मक की पुत्री, उनका नाम था रुक्मणी, रुक्मणी मैया की। जो भी साधु पुरुष रुक्मणी मैया के महल में आता, जो भी उनके घर आता, भीष्मक राजा बहुत साधु हृदय थे, वैष्णव का गुण है। तो अभी हम रुक्मणी मैया के विवाह की जो लीला है उससे हमने लीला तो कई बार पढ़ी है कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद की कृपा से, कई बार भागवत की कथाओं में भी सुनी है, परंतु आज उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो जब साधु पुरुष उनके घर पे आते थे तो हमेशा एक ही चीज करते थे, मुकुदस्य रूपम वीर्यम गुणः श्रीः, मुकुंद के रूप वीरता गुण और श्री, मतलब उनके ऑपुलेंस का ही वर्णन करते थे। अरे क्या बताएं आपको, द्वारकाधीश का ऑपुलेंस, क्या उनका ऐश्वर्य है, क्या भगवान है, ऐसे करके काट डालते हैं बस सामने कोई आ जाए तो। ऐसा कोई व्यक्ति सुने, कोई स्त्री सुने तो क्यों नहीं अपना दिल दे देगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है और वो अपनी अंतरंगा शक्ति के गुण जानते हैं कि उनको कैसा पति चाहिए। परंतु जो ये लीला हुई, इस लीला के अंदर राक्षसी विवाह का वर्णन किया गया। आजकल तो बड़ा पर्याय है राक्षस विवाह, है ना, उठा करके ले जाना, शादी कर लेना और उसके बाद में फिर कोर्ट मैरिज कर लेना, फिर घर पे आके बता देना हमने शादी कर लिया। परंतु ये वैसी चीप मैरिज नहीं है। यहां पर लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण परमात्मा है और वो अपनी स्वांश शक्ति को जानते हैं, इसलिए वो यहां पर इसको लीला के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो हमें इसको इमिटेट नहीं करना है, कहीं पता चले कि लोग भी उठाकर भागने लग गए, बोले कृष्ण भागते थे हम भी भाग गए, उन्होंने राक्षस विवाह किया हम भी करेंगे, उन्होंने किया तो आज तक उनकी लीला गुणगान गाई जाती, हम करेंगे तो हम राक्षस कहलाएंगे, इसलिए हमें वो काम नहीं करना है। रुक्मिणी मैया जो थी उनका भाई रुक्मी इतना प्रेम करता था, वो बोला इस संसार में कोई शक्तिशाली है मेरी बहन के लिए तो एक ही बना है, शिशुपाल। शिशुपाल जो था ना बड़ा ही अमेजिंग था, उसके चार हाथ थे और उसकी तीन आंखें थी, एक आंख यहां थी, दो आंख यहां थी और चार हाथ थे। जब वो अपने पिता दम घोषा और अपनी माता श्रुतुश्रवा के घर में उत्पन्न हुआ, अभी दम घोषा श्रुतुश्रवा को शौक लग गया था देख करके, ये कैसा बच्चा आया है, क्योंकि जो श्रुतुश्रवा थी ये वसुदेव, जिनके घर कृष्ण भगवान आते हैं, वसुदेव देव की, वसुदेव की बहन थी श्रुतुश्रवा, तो शुतुरश्रवा की जो शादी हुई वो हुई थी दम्भ घोष से। दम्भ घोष और शुतुरश्रवा के घर में उत्पन्न हुए कौन? शिशुपाल, है ना। मैं सोच रहा था जिस शिशु का सही से पालन नहीं हुआ उसका नाम है शिशुपाल, इसको पाल तो लो कम से कम इस शिशु को ढंग से, ऐसे सोच रहा था। लेकिन बताते हैं जय विजय के रूप में भी थे दंतवक्र और शिशुपाल। तो ये शिशुपाल जो था इसकी तीन आंखें थी, तो माता पिता घबरा गए, तो आकाशवाणी हुई कि इसका जो वध करेगा वही उसकी गोद में जाते ही इसके जो अद्भुत रूप है वो गायब हो जाएगा, इसकी नेत्र गायब हो जाएंगे, इसके हाथ गायब। ये महाभारत का प्रसंग है, भागवत में नहीं है। हाथ गायब हो जाएंगे दो एक्स्ट्रा और एक आंख। तो अब दम्भ घोषा शुतुरश्रवा का एक ही कार्य था, जो भी उनके घर में उनकी गोदी में रख देना बच्चे को, देखिए जरा कैसा है। हाथ नहीं गिरते थे, बोले बच गया, ये तो नहीं मारेगा, सबके हाथ में देते थे। एक दिन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके घर में पधारते हैं, भाई वसुदेव जी के पुत्र हैं कृष्ण और शुतुरश्रवा उनकी बुआ के घर में उत्पन्न हुए हैं शिशुपाल, मिलने आ गए। मिलने आए तो उन्होंने कृष्ण को कहा, लो कृष्ण मेरे शिशु को देखो। तो जैसे ही कृष्ण ने गोद में लिया, ठम, दो हाथ डाउन और आंख गायब। अभी तो घबरा गई बुआ, अरे घर में ही भाई मार देगा। तो उन्होंने पांव पकड़ लिए, बोले देखो कुछ भी करना भाई को मत मारना, मैं तुमसे वचन चाहती हूँ, कुछ मत दो, बस एक आशीर्वाद दे दो, तुम इसका वध नहीं करोगे, चाहे ये 100 गलती क्यों ना करे तुम इसको मार। कहा ठीक है बुआ, मैं वचन देता हूँ 100 गलती करेगा मैं नहीं मारूंगा। हाँ भगवान है ना, भगवान से कौन जीत सकता है। कहा 100 गलती करे मत मारना। कहा 100 गलती करेगा नहीं मारूंगा, 101 कर। हाँ 101 तो बहुत, कहाँ करेगा, बेचारा भाई भाई में प्रेम रहेगा कौन, काली इतने 101 गलती कहाँ कर पाएगा। वो तो ऐसा हो गया था शिशुपाल कि जिस दिन से पैदा हुआ तो नर्सरी राइम की जगह सिर्फ कृष्ण को गाली ही देता था। जिंगल बेल गाने की बजाय वो कहता था कृष्ण तो अघोरी है, कृष्ण तो नीच है, कृष्ण तो ऐसा है, भगवान को बोलता था। अब उसको अपना काउंट डाउन जल्दी फिनिश करना था, क्योंकि देखा जाए तो जय विजय उनको वापस भगवान की सेवा में पुनः जाना है। तो उसने काउंट डाउन प्रारंभ करने के लिए उसे मालूम था गालियां दो भगवान को, तो ऐसे देता था। तो ऐसे ही शिशुपाल से रुक्मी विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर एक रुक्मिणी के मन में था कि कैसे भी करके क्या करूं, मैं अपना संदेश कृष्ण तक पहुंचा दूं कि मेरे भाई रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ में ऐसे दुराचारी के साथ मेरा विवाह फिक्स कर दिया है। तो अपने हृदय की बात पहुंचाना चाहती है मैया, तो एक सुनंद नाम के ब्राह्मण को एक पत्र लिख के देती, कहती है पत्र ले जाओ और जाकर के द्वारकाधीश को दे देना। अब जो ये ब्राह्मण था ये पहुंचता है और जाकर के पत्र खोलता है कृष्ण भगवान के सामने, और जाकर के पत्र का वर्णन करते हुए कहता है, धीराम पतिम कुलवती नावृणीति कन्या। रुक्मिणी जी कह रही हैं, कृष्ण आपकी सुंदरता का व्याख्यान मैं बचपन से सुन रही हूं, क्योंकि मेरे पिता भीष्मक जो थे वो कैसे थे, साधु पुरुष थे। अब साधुओं का एक ही कर्तव्य है, मुकुंदस्य रूपम व्रियम गुणम श्रियम, एक चार चीजों की चर्चा जो करे वो साधु है। इसके अलावा जो चर्चा करे, वो भक्त ऐसा, वो भक्त ऐसा, वो प्रसाद ऐसे खाता है, वो कपड़े ऐसे पहनता है, तो सही मायने में उसने मुकुंद की चर्चा करके अपने भक्ति में जीवन को प्रारंभ। मुकुंदस्य रूपम व्रियम गुणम श्रियम, यही चार चीजों की चर्चा जो करे वो साधु है। तो कहती है श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की इच्छा है, तो कहते हैं धीरम पतिम कुलवंती ना वृणिता कन्या, आपके जैसे का गुणगान सुनने के बाद में कौन सी कन्या होगी जो आपको अपना मन नहीं दे देगी। तो इस ब्राह्मण के द्वारा मैं पत्र भेज रही हूं, इसको ध्यान पूर्वक स्वीकार कीजिए, प्रेम से आपके लिए लिखा गया एक पत्र, प्रेम पत्र, तो मतलब फर्स्ट लव लेटर लिखा गया होगा रुक्मिणी मैया के द्वारा। आजकल लव लेटर लिखे जाते हैं पर उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, यहाँ पर कृष्ण की सेवा है। और देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर टीचिंग है, ब्राह्मण जब लेकर के भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचते हैं तो उनकी बात को स्वीकार करते हैं कृष्ण, मतलब कि एक ब्राह्मण हो या वैष्णव हो उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए, भगवान होकर के ब्राह्मण की बात को स्वीकार करते हैं। और हम कैसे, जब वैष्णव जन आपको कोई आदेश दें, आपको कोई बात बताएं, 1000 डाउट आते हैं, यहां तक कि वैष्णवों को लोग ब्लेम भी कर देते हैं। टीचिंग है ये हमारे लिए, जीवन की एक शिक्षा है कि वैष्णवों को हमको बहुत ही ऊंचा सम्मान देना चाहिए। रुक्मिणी मैया कहती हैं, आप आकर के मेरा पाणी ग्रहण करिए,
पाणी मतलब होता है हाथ, पाणी ग्रहण करिए। तो ऐसे कई बार देखा होगा शादी के कार्ड में ऐसे बना रहता है पाणी ग्रहण, तो पाणी ग्रहण उनको मालूम नहीं है पाणी ग्रहण क्या होता है, तो जाते हैं लोग कहते हैं लीजिए पाणी पी लीजिए, बोले तो दामाद जी ने पाणी ग्रहण किया था हमारे घर आए थे, हमने तो उसी दिन अपनी बेटी मान ली जिस दिन पहले दिन हमारे घर आके पाणी ग्रहण किया, वो पाणी नहीं है पाणी ग्रहण, हाथ हाथ जिस दिन ऐसे दिया जाता है तो वो ऐसे करके वो पाणी ग्रहण, आकर के मुझे शिशुपाल से बचा लीजिए। उसी प्रकार से जैसे सिंह के मुंह से सियार जो होता है ना, वो सियार जब उनके ऊपर हमला किया जाता है तो सिंह जो होता है उससे बचा करके भागते हैं अपने शिकार को लोग, तो ऐसे सियार मुझे ले जाना चाहता है और सिंह जैसे आकर आक्रमण करके अपने शिकार को बचा करके ले जाता है और सियार कुछ नहीं कर पाते, तो शिशुपाल एक सियार के समान है और कृष्ण आप सिंह के समान है, इसीलिए आपका नाम नरसिंह है। हरि बोल, है ना। और फिर कहती है, अब देखिए कितनी दृष्टि है ना, पहले से नरसिंह रूप का दर्शन हो रहा है उनको, है ना, भगवान का। और वो कहती है कि मैंने जितने भी अगर अनुष्ठान व्रत आदि किए हो अपने जीवन में तो उनका एक ही फल दीजिएगा, आप आकर के मुझे ग्रहण कर लीजिएगा। तो यहां पर एक शिक्षा मिलती है, कृष्ण को पाना इतना सरल नहीं है। रुक्मणी देवी जो राधा रानी का स्व अंश है, वो क्या कह रही है, मैंने अगर अपने पूर्व जन्मों में, जन्म नहीं जन्मों में अगर पुण्य किए हो, भक्ति किए हो, अनुष्ठान किए हो, व्रत किए हो, तो कृष्ण आप मुझे ग्रहण करना, इतना सरल है। बहुनान जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है जो ये जान जाए हर चीज में वासुदेव है। हम तो दोष दृष्टि रखते हैं, वासुदेव का दर्शन होता कहाँ है। और प्रभुपाद कहते थे व्हेन देयर इज माया देयर इज नो कृष्णा, व्हेन देयर इज कृष्णा देयर इज नो माया। तो अगर हमको माया रूपी लोग बोलते रहते कितना मायावी संसार है, मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि कृष्ण नहीं है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया रे अधिकार, जहां कृष्ण नहीं वही माया है। तो कृष्ण को भूल जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी माया है, और यह आसानी से प्राप्त नहीं होता, कई जन्मों के व्रत आदि तपस्या के बाद। भक्त तो बोलते हैं प्रभु जी हम भगवत धाम चले जाएंगे अगर हरि नाम लेना शुरू कर देंगे तो, क्वेश्चन पूछते हैं लोग, पहली बार अगर हरि नाम लेंगे, सेमिनार हुआ डीप सिक्स डे सेशन, बोले जब शुरू किया हम भगवत धाम जाएंगे, कई लोग तो ऑलरेडी टिकट विकेट बुक कराने लग जाते हैं, वहां जाएंगे ऐसे करेंगे, ये वाली किगली खेलेंगे गोपियों के साथ में, ये वाला फल बनकर खाएंगे, कृष्ण के लिए ऐसी ड्रेस बनाएंगे, सब ऐसे भाव रखते हैं। लेकिन क्या बता सकते हैं आप, क्या नाम जप करने वाला भगवत धाम जाएगा, हाँ या ना, हाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ बोलिए ना, हाँ या ना, हाँ भी एक प्रभु जी बोल रहे हैं हमारे, वो उनको गारंटी होगी, वो तो जा ही रहे हैं, और कोई बता सकते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नाम जप करेंगे अगर तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन बीच में एक टर्म एंड कंडीशन है, स्ट्रिक्ट मार के जाएंगे, लेकिन इस जन्म में जाएंगे नहीं जाएंगे गारंटी नहीं है। बहुनान जन्म जन्मनांते, बहुत जन्मों के प्रयास के बाद, बहुत व्रत आदि अनुष्ठान करने के बाद, ध्यान पूर्वक ऑफेंसलेस अपराध रहित होकर के जप करने के बाद, कोई रुक्मणी मैया की तरह सोच लेकर आता है कि अरे कृष्ण हमें ग्रहण करेंगे, नॉट सो इजी। हर जपने वाला भगवत धाम जाएगा ये निश्चित नहीं है, जाएगा लेकिन कौन से जन्म में जाएगा, उसका जब पूर्ण शुद्धिकरण होगा, वो इस जन्म में कर ले ध्यान पूर्वक तो उसके ऊपर है, अगले में करे तो, अगले में करे तो। तो इस तरह से हमें देखना है कि इस जन्म में जाना है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम, इसी जीवन में ये आने जाने का चक्र समाप्त कर दो, पेंडिंग मत रखो, अगले जन्म में क्या पता इस्कॉन द्वारका में आत्मा आई नहीं आई, भक्त मिले नहीं मिले, वहां पर पता चला आपको साउथ अफ्रीका में भेज दिया गया जहां पे मांस खाते हैं लोग, और एक सेंटर है वहां पे दो भक्त हैं हरे कृष्ण जपने वाले, और वो कहते हैं आइए संडे लव फीस्ट में, आप जाते हैं वहां तीन भक्त होते हैं संडे लव फीस्ट में, दो वो और एक आप, तो कैसे भजन होगा। और यहाँ भर भर के भक्त आते हैं, शाम को आएंगे, अभिषेक हो रहे हैं, प्रभु जी का कीर्तन चल रहा है, अमोघला प्रभु जी का लेक्चर चल रहा है, ऐसे कहाँ मिलेगा। तो इस जीवन में भी अगर सीरियस नहीं हो पाए तो कौन से जन्म में जाकर के हम ध्यान दे पाएंगे भगवान। वो कहती है मैं तुम्हें राजनीतिक तरीका बता रही हूं, और देखो कितना सुंदर पत्र है, पूरा एकदम स्ट्रेटेजिकल चार्ट, कि आप जब लेने आएंगे बहुत सारे राजा यहां होंगे, उनको कुचलना पड़ेगा, इसलिए आप गुप्त रूप से आइएगा, ये भी बता दिया। और उस प्रकार से विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण ने वैसे ही रुक्मिणी मैया को प्राप्त किया जैसे समुद्र मंथन से भगवानों के देवताओं ने लक्ष्मी जी को प्राप्त किया, विष्णु ने लक्ष्मी को प्राप्त किया। तो समुद्र मंथन किसका समुद्र है? वो समुद्र है जिसमें इतने सारे राजा बैठे हुए हैं और उन सबका मंथन करना है आपको, कभी इस भूसे से इसका मंथन, एक पंच से इसका मंथन, और मंथन करते हुए कुचलते हुए आप ले जाएंगे और उसमें जहर भी उगलेगा। कौन? शिशुपाल रुक्मी। परंतु आपको, आपके लिए मैं भी प्रकट हो जाऊंगी लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी, और आपको जैसे विष्णु ने लक्ष्मी को ग्रहण किया था ऐसे ही आपको मुझे ग्रहण करना है। और उन्होंने फिर बताया कि महल के अंतरपुर में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, जहां रुक्मिणी मैया रहती है वहां प्रवेश करना मुश्किल है, और इसलिए मैं विवाह के एक दिन पहले, अब यहां पर एक सीक्रेट को भी दे रहे हैं पासवर्ड, विवाह के एक दिन पहले मैं गिरजा मंदिर में पूजा के लिए जाऊंगी। बिल्कुल फिल्मी सीन है ना, फिल्में इसको देखकर बनाई गई है, लेकिन ये बहुत ही आध्यात्मिक लीला है। कहते हैं इसका जो श्रवण करता है उसका सारा काम वासना धुल जाती है। तो मैं गिरजा मंदिर मतलब दुर्गा मंदिर में जाऊंगी पूजा करने के लिए विवाह से एक दिन पहले, और आपको बस एक दिन पहले मुझे उठा लेना है वहां से पिक। जैसे होता है ना, व्यक्ति पूछते हैं चोटी क्यों रखी जाती है, शिखा, कई लोग पूछते हैं आप लोग चोटियां क्यों रखते हैं, बच्चों के भी रख देते हैं, एक ऐसा फैशन है। तो इसका कारण यही है, जब भव सागर में फंसे हुए भक्त तड़पते हुए चिल्लाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान सुनते हैं और आकर के पिक, जैसे रुक्मिणी को पिक किया था, तो पिक करने के लिए क्या है, चोटी। लोग बोलते चोटी से क्यों पिक करेंगे, हाथ से पिक नहीं कर सकते? तो उसके लिए एक भक्त उदाहरण देते हैं कि अगर सारी सब्जियां धुल रही हो, एक बर्तन में सारी सब्जियां धुल रही हो जिसमें आलू हो टमाटर हो और साथ में बैगन भी हो, तो कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको सरलता से कीचड़ में से उठाया जा सकता है? क्यों? पिक एंड चूज, भगवान हमको चूज कर सकते हैं, इसलिए ये रखना बहुत जरूरी है, इसी से चूज किया जाता है अपने संप्रदाय का चिन्ह। तो ऐसे ही माता ने कहा आप मुझे पिक करिएगा, और पिक पॉइंट भी बताया गिरजा मंदिर। कृष्ण ने ब्राह्मण को जो था जब ये बात सुनी, भगवान का हृदय ऐसा विफल हो गया प्रेम से रुक्मिणी मैया का चित, वो लेटर पढ़ के, और फिर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हाथ, वो ब्राह्मण का हाथ लेके अपने हाथ में रख लिया, पहला पाणी ग्रहण तो ब्राह्मण का कर लिया, और हाथ में हाथ लेकर के बोलते हैं तद अहम अपि तच्चितो निद्राम चना लभे निशि वेद अहम रुक्मिणी द्वेषान ममो उद्वह निवारितः। मैं जानता हूं रुक्मिणी जितना जितना तुम मेरा चिंतन करती हो उतना उतना मैं भी आपका चिंतन करता हूं। तो ये बहुत ही सीखने वाला श्लोक है। तद अहम अपि तच्चितो निद्राम, सोते सोते भी निद्राम, सोते सोते भी मैं क्या करता हूं, चना लभे निशी रात्रि के समय वेद अहम रुक्मिणी द्वेषान ममो उद्धत निवारिता, इसलिए तुम्हारे से मुझसे तुमसे द्वेष करने वाला कोई भी रोक नहीं पाएगा इस विवाह को, चिंता मत करो। ऐसा उन्होंने श्लोक ब्राह्मण के हाथ में देकर कहा, ये रिप्लाई दे देना उनको, डोंट वरी। तो इससे एक शिक्षा मिलती है, टीचिंग नंबर टू, कि अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान का चिंतन करते हैं, रुक्मिणी मैया सारे टाइम क्या कर रही थी, भगवान का चिंतन, और भगवान क्या कह रहे थे कि मैं रात्रि में भी आपका चिंतन करता हूं। ऐसे एक बार द्वारका में अर्जुन इंद्रप्रस्थ से आए थे भगवान से मिलने के लिए, तो सत्यभामा ने सोचा चलो अर्जुन को उठा लेती हूं ब्रेकफास्ट के लिए। तो सुबह सुबह अर्जुन के कमरे में प्रवेश किया तो अर्जुन के मुंह से क्या निकल रहा था, सोते सोते कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्या निकल रहा था, अरे इतनी उदासी तो भैया मतलब जवाई भी नहीं आती है, तो कृष्ण का नाम है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे कृष्ण का नाम निकल रहा था। सत्यभामा सोचने लगी कृष्ण का नाम बोल रहा है कि कीर्तन कर रहा है सोते सोते। हम लोग प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोते सोते भी जप करते हैं, और हम लोग बिल्कुल अपोजिट हैं, जप करते करते भी सोते हैं। तो अर्जुन शिरोमणि है सोते सोते जप करने के, हम शिरोमणि हैं जप करते करते सोने के, हमारी स्थिति क्या है। तो अर्जुन जो थे वो रात्रि में भी भगवान का चिंतन करते हुए इतना सोते थे कि कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। तो सत्यभामा आती है, कहती है अर्जुन, अब वो कृष्ण कृष्ण, अब वो क्लैपिंग जो है वो म्यूजिक बन जाती है ऐसे। तो जब नारद जी क्लैपिंग सुनते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न होता है, चलो बड़े सुंदर ताली बजरी कीर्तन हो रहा है, तो नारद जी तो है ही कीर्तनीय सदा हरि, पहुंच गए वीणा लेकर के, वो अपने वीणा बजाने लगे टड़ंग टड़ंग टड़ंग, है ना, इधर वो। और रुक्मणी मैया ने सोचा इतना कीर्तन कैसे शुरू हो गया द्वारका में, क्या हो गया? तो अंदर आकर के देखा तो एक कीर्तन कर रहा है मुंह से, एक ताली से करताल बजा रहा है और एक वीणा बजा रहा है। तो रुक्मणी देवी जो थी वो भाव विभोर होकर के नृत्य करने लग गई, और नृत्य हो रहा है, वो डांस कर रही है, अर्जुन सो रहे, और कृष्ण भगवान ने सुना कीर्तन हो रहा है और सब कह रहे हैं वाह मैया वाह क्या स्टेप है, हरि बोल हरि बोल। रुक्मणी मैया डांस की जा रही है डांसिंग फॉर्म में। तो कृष्ण ने जब सुना तो कृष्ण भी अपने कमरे से निकल कर, अपने महल से निकल करके रुक्मणी मैया के पास में आए, देखने के देखा अर्जुन सो रहे, रोम रोम से कृष्ण का नाम निकल रहा है, यहां से भी कृष्ण 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 सो रहे। तो भगवान क्या करने लगे, अर्जुन के पांव दबाने लगे, पांव सहलाने लगे कि कहीं इसकी नींद ना खुल जाए, इतना शोर हो रहा है, कितना सुंदर दिख रही है समाधि, कृष्ण का नाम ले रहा है ना, मेरा नाम ले रहा है, और सब नृत्य करे, समाधि खुल ना जाए, तो पांव दबा, पांव जैसे ही दबाने प्रारंभ किए भक्त की समाधि टूट गई। अर्जुन बोले ये क्या चल रहा है प्रभु? कहा अर्जुन तुम शिरोमणि हो, लोग ये तो देखते हैं कि मैंने तुम्हारे कंधे पर पांव रखा, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने मेरे कंधे पर पांव रखा, मैं तुम्हारा सारथी बना, तो जब मुझे लेफ्ट जाना होता था तुम्हें तो तुम मेरे कमर में इधर मारते थे, जब राइट को जाना होता था तुम इधर मारते थे, जब रोकना होता था तुम मेरी पीठ के ऊपर पूरा ब्रेक लगाते थे। लेकिन अर्जुन को यह नहीं जानता कि रात के उस अंधेरे में तुम मेरा नाम लेते थे जब तुम कैंप में सोते थे, क्या तुम्हारी भक्ति थी। कृष्ण भगवान को मालूम पड़ा, भीष्म पितामह को दुर्योधन ने बोल दिया खाते हमारा हो और अटैक करते हो हमारी तरफ से, अर्जुन को मार नहीं सकते, आपके सामने एक छोटा सा वीर एक बच्चा नहीं टिक पा रहा है, मार दो उसको, कल समाप्त कर दो, अगर हमारा नमक खाया है तो, पिक्चर का डायलॉग भी है ना, नमक खाया है तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं या तो कल खुद मर जाऊंगा या फिर कल अर्जुन को मार दूंगा। ये बात जब भगवान कृष्ण ने सुनी दौड़े दौड़े आए, अर्जुन के कैंप में घुसे। अब अर्जुन क्या कर रहे थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जागते हुए नहीं सोते हुए कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो भगवान ने उठाया, अर्जुन उठो उठो हरि बोल उठो, तुम्हें पता है भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ले ली, एक प्रतिज्ञा आज से कई वर्ष पूर्व ली थी और आज तक निभा रहा है ब्रह्मचारी होने की, तो उसने प्रतिज्ञा ली है कल तुम्हें समाप्त कर देगा, तो तुमने कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं बनाया, कैसे तुम योद्धा हो। कहा प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं, मैं जब सो रहा था ये इंफॉर्मेशन लेके कौन आया, आप लेके आए, किसके पास आए, मेरे पास, तो अब मैं क्या ये सोच सकता हूं कि आपने अभी तक कुछ बनाया नहीं होगा प्लान की कैसे कल जीतना, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मांड नायक जाग रहे हो वो व्यक्ति तो निश्चिंत होकर सो रहे, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। बोलिए हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है, तो ये चक्रधारी भगवान अगर आपकी चिंता करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंतन करते हुए करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान का चिंतन करते हुए। हम ज्यादातर परेशानियों का चिंतन करते हुए भीख मांग रहे होते हैं, हमारी काम वासना समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, हरे कृष्णा प्रभु मन नहीं लग रहा, मन लगा दो हरे कृष्णा, कृष्ण का चिंतन नहीं होता। लेकिन प्रयास करें अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो फिर ये फालतू चीजें आएंगी नहीं। तब भगवान ने उस ब्राह्मण को कहा ठीक है रुक्मणी ने मुझे बुलाया है, तुम जब तक पहुंचोगे तब तक देर हो जाएगी, एक काम करो, दारुक अपने सारथी को कहा रथ निकालो। तो दारुक ने एक रथ निकाला जिसमें चार घोड़े थे, चार घोड़ों में से पहले घोड़े का नाम था शैब्य, शैब्य नाम का जो घोड़ा था इसका रंग हरा था, ग्रीन कलर। सुग्रीव, ये वाले सुग्रीव नहीं, रामायण वाले, एक घोड़े का नाम है सुग्रीव। सुग्रीव का रंग पीला था। और फिर बाद में मेघ पुष्प नाम के एक भगवान के घोड़े को निकाला गया, जिसका रंग श्यामल रंग था, बादलों जैसा घन श्याम। और बलाहक नाम का एक घोड़ा था जिसका रंग सफेद था, व्हाइट कलर। इस प्रकार से ये चारों घोड़ों को लेकर के दारुक रथ लेकर के आए, भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और तुरंत ब्राह्मण को हाथ दिया और कहा गरुण ध्वज पे तुम भी आरूढ़ हो जाओ। तो यहां पर एक और टीचिंग नंबर 3 शिक्षा आती है कि जिस ब्राह्मण ने भगवान के लिए पैदल चलकर विदर्भ देश से महाराष्ट्र, हम सक लीजिए अमरावती से चलकर के कहां गया, द्वारका, गुजरात के कितनी दूसरी छोर पे गया, महाराष्ट्र से गुजरात एक स्टेट पार कर ली, पैदल ब्राह्मण चलाया भगवान का आदेश लेकर रुक्मणी मैया की और द्वारकाधीश की सेवा करने के लिए। उसको क्या किया भगवान ने, अपनी शादी करने निकल गए, उसको छोड़कर इग्नोर कर गए, उसको गरुड़ ध्वज पे बिठा लिया आपने, कहा तुम यहां बैठ जाओ। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर आज हम रुक्मणी द्वारकाधीश की सेवा में लगेंगे तो अंत काल में भगवान गरुड़ विमान पर आपको बिठा करके अपने भगवत धाम ले जाएंगे। तो उसके लिए आज सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा का भाव तो रखना पड़ेगा। हम भगवान को तो क्या बोलेंगे, हम इंसान जो दिखने वाले उनको भी ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाते हैं। एक स्टेटमेंट है, बेस्ट एटीट्यूड इज ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हमें भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान ने ग्रैटिट्यूड दिखाया उस ब्राह्मण के प्रति, ऐसा एटीट्यूड था, ये ब्राह्मण मेरी सेवा करके आया है, इसको त्याग के नहीं जाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जिनसे शिक्षा लेते हैं, जिनके साथ जुड़ते हैं, जो भी हम जिनसे सीख रहे हैं, जिनके साथ सेवा कर रहे हैं, हर भक्त के साथ में हमें थोड़े समय बाद परेशानी हो जाती है। उसका कारण है नो एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड, भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रति हमारा कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। भीष्मक जो थे, यहां पर अपनी पुत्री के रुक्मणी के विवाह के लिए पूरे शहर को सजा रखा था, ब्राह्मण पितरों देवताओं को सबको भोजन कराया जा रहा था, दुल्हन के वस्त्रों को साफ तरीके से सजाया गया था, दुल्हन को साफ वस्त्र पहनाकर रुक्मणी मैया को जैसे आज सजाया गया है सजाया गया था, सभी वेदों के उच्चारण हो रहे थे और ब्राह्मणों को दान में सोना चांदी वस्त्र गहने आदि दिए जा रहे थे। तो ये शिक्षा है कि जो ब्राह्मण सेवा करते हैं उनको क्या देना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए दक्षिणा देना चाहिए। जितने भी अतिथि थे उन अतिथियों में महान महान सारे के सारे शिशुपाल और रुक्मी के मित्र थे और सभी कृष्ण के विरोधी थे, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, दम्भघोष। तो ये सारे के सारे जो थे ये उनके अगेंस्ट थे। तो बलराम जी को जब पता चला कि अकेले भगवान निकल गए हैं ब्राह्मण को लेकर के और कोई सेना भी नहीं ली है, वैसे तो भगवान को सेना की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बलराम क्योंकि भगवान की सेवा करने का शांत भाव में भगवान की सेवा करते हैं, उन्होंने सोचा सेना लेकर के पीछे पीछे चलता हूं। तो पूरी सेना की टुकड़ी लेकर के बलराम जी वहां पहुंच गए। रुक्मणी मैया जो थी उनके पास ब्राह्मण को भेजा गया, भगवान बाहर ही रुक गए और उन्होंने ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण को शांतिपूर्ण उसके चेहरे को देख करके मैया समझ गई थी ये जरूर खुशखबरी लेके आया है। होता है ना, एक चेहरा देख के पता चलता है, कई भक्त होते हैं एकदम भनाए हुए से रहते हैं ना, चैंट एंड बी हैप्पी का कोई मूड ही नहीं दिखता उनका, ऐसे से चेहरा रहता है घबराया हुआ, सेवा का प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, भक्त ने ये बोला, उसने ये किया, मैंने ये देखा, उसने ऐसे सुना, तो बेचारा कभी शांत भाव से सेवा कर ही नहीं पाता। ब्राह्मण का कर्तव्य है संतोषे परमम सुखम, संतुष्ट रहना चाहिए हर परिस्थिति में। तो ब्राह्मण संतुष्ट था, उसके चेहरे का भाव देखकर रुक्मणी मैया बोली अच्छा काम बन गया। तो बताओ भगवान ने क्या कहा, बोले कहा क्या, लेकर खुद ही आए हुए, अच्छा आ गए हैं। तो उन्होंने जब ये खबर सुनी तो अब सोचा मैं दूं क्या, तो गहना आदि कुछ उनके पास देने के लिए नहीं था, क्योंकि कुछ भी देती हैं तो श्रृंगार में से माइनस होगा और फिर रुक्मी को शक हो जाएगा कि इनके शरीर से कुछ निकल गया एक चीज, तो फिर रुक्मी प्रश्न पूछेगा कहां गया, फिर मुझे बताना पड़ेगा मैंने कृष्ण को ब्राह्मण को भेजा, झूठ मैं बोल नहीं सकती, मैया झूठ कैसे बोले। तो उन्होंने ब्राह्मण को एक चीज दी, क्या जानते हैं, उन्होंने ब्राह्मण को नमस्कार किया, क्या किया, नमस्कार, थैंक यू। तो ये थैंक यू जो है फोल्डेड हैंड, ये भी रुक्मणी मैया से प्रारंभ हो रहा है, कोई विदेशी कल्चर नहीं है ना, या फिर लोग बोलते हैं वैदिक कल्चर है, रुक्मणी मैया का स्पिरिचुअल कल्चर कि जो आपकी सेवा करे उसको क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। कई भगवान की ऑफरिंग्स में मुद्राएं होती हैं, जब भगवान को हमारे पुजारी लोग ऑफरिंग करते हैं, अगरबत्ती दिया, तो उससे पहले कई मुद्राएं होती हैं। कहते हैं एक तंत्र होता है, एक मंत्र होता है। मंत्र में मंत्र उच्चारण करे जाते हैं पूजा के, इन्हें बीज मंत्र कहते हैं, और तंत्र में मुद्राएं बनाई जाती हैं, है ना, विभिन्न मुद्राओं से भगवान को ऑफरिंग। लेकिन आचार्यगण वर्णन करते हैं कि अगर आपको कोई तंत्र ना आता हो, मतलब मुद्रा ना आती हो, और आपको भगवान को ऑफरिंग करनी हो, तो आप तंत्र सीखने निकलेंगे, मंत्र सीखने निकलेंगे, या ऑफरिंग करेंगे? आता नहीं है, समय भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा भगवान को अगर आपको कुछ भी समर्पित करना है और भगवान उसे स्वीकार करें, तो उसके लिए एक ही चीज है, अंजलि मुद्रा। प्रभु मैं बहुत दीन हूँ, कुछ आता जाता नहीं, स्वीकार कर लेना बस। इतना देखकर भगवान रीझ जाते हैं, एकदम प्रेम में विफल हो जाते हैं। सब कुछ जो आप उन्हें देना चाहते हैं, अगरबत्ती दिया कुछ भी, भगवान स्वीकार करेंगे। तो इसलिए सीख सके अगर तो बहुत अच्छा है, तंत्र मंत्र नहीं सीख सके तो फिर अच्छा है कि हम अंजलि मुद्रा, प्रार्थना की मुद्रा जो कि भगवान रुक्मणी मैया ने ब्राह्मण को दी, वो हमें देनी चाहिए। इस प्रकार से भीष्मक ने जब पता चला कृष्ण और बलराम आ गए हैं, तो कृष्ण और बलराम को आभूषण दिए, प्रसाद दिया, बैठने के लिए कहा, स्वागत किया। उनको लगा कि जैसे सभी राजा आए हैं, ये भी आए हैं शादी देखने के लिए। अभी विदर्भी वासी जो थे वो चाहते थे कि कृष्ण विवाह करें। तो मैंने आपको पहले एक श्लोक बताया कि उनसे बढ़िया और कोई भार्या नहीं है जिनके प्रति कृष्ण का विवाह हो सकता है। तो रुक्मणी देवी पूजा के लिए गिरजा मंदिर की तरफ गई और बाहर निकलकर ऐसी लग रही थी जैसे मतलब सर्व आकर्षक लग रही थी। तो आकर्षक क्यों लग रही थी? क्योंकि अभी शक्ति को शक्तिमान का स्मरण हो रहा था, शक्ति को शक्तिमान का स्मरण हो रहा था। तो हम कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति तो है नहीं, तटस्था शक्ति है। तो अगर शक्ति को शक्तिमान का स्मरण हो, तो यहां पर एक टीचिंग मिलती है, वो व्यक्ति भी आकर्षक हो सकता है। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व जगत को क्यों भक्त बना पाए? क्योंकि वो तटस्था शक्ति सदा किसका स्मरण करती थी? शक्तिमान का। तो यहां भी अंतरंगा शक्ति शक्तिमान का स्मरण करने के कारण शक्तिमान हो गई थी, इतनी सुंदर दिख रही थी, इतनी आकर्षक लग रही थी। सभी राजा बोल रहे थे, देखना शिशुपाल को छोड़ करके मुझसे विवाह कर लेंगी ये, मेरा बल देखो, मेरी चाल देखो, मेरा यौवन देखो, मेरा रूप देखो, ये सब खुशमुश हो रही थी सभी राजाओं के अंदर। लेकिन उन्होंने तो अपना दिल एक ही को दे रखा था, किसको? कृष्ण को। कृष्ण ने जैसे ही रुक्मणी मैया को देखा कि वो आ रही हैं गिरजा मंदिर की ओर, कृष्ण को देखते ही कृष्ण ने रुक्मणी को देखा, रुक्मणी ने कृष्ण को देखा, उसी प्रकार से जैसे बोलते हैं ना, प्रेम तो पहले ही सही था, अब ये नहीं बोल सकते लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ है, आफ्टर लव फर्स्ट साइट ये बोल सकते हैं, प्रेम के बाद पहला मिलन हो रहा है। जैसे मिले रुक्मणी मैया को, क्योंकि उन्होंने भगवान का रात दिन चिंतन किया, इनको भी भगवान ने जैसे ब्राह्मण को गरुड़ ध्वज पे बिठाया था, रुक्मणी मैया को लेकर के गरुड़ ध्वज पे बिठा लिया। अभी सारी के सारी जो साथ में सहपाठी जितनी भी थी, जितनी भी सहेली मित्र सखी, सभी हैरान हो गए, ये कहां चली, के कौन से एक कृष्ण के साथ क्यों जा रही है, इनका विवाह तो शिशुपाल के साथ होना है। इस प्रकार से सभी की सभी चिल्ला उठी, और सभी राजाओं को जब मालूम पड़ा, सब अपने अपने शालवादी रथ लेकर के सब भागे कृष्ण की ओर। और सबसे पहले जितने भी राजा थे वो बोलने लग गए, इसकी तो मतलब ऐसे कैसे लेकर के भाग गया, शिशुपाल की स्त्री को उठा लिया। अरे चलो शिशुपाल के साथ विवाह नहीं होता, कम से कम हमारे साथ, ये ग्वाला भाग करके द्वारका में इसने पानी के नीचे शरण ले लिया, हमने कहा चलो छोड़ दिया, मतलब जरासंध का दुश्मन, मतलब ऐसे करके बोलने लगे। तो यहां पर एक शिक्षा मिलती है, प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको कभी भी किसी भी चीज के हमारे जीवन से चले जाने के बाद में दुखी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमारी है ही नहीं। कुछ लोग बड़े वैरागी बनते हैं, पता है आपको, मैं क्या कुछ छोड़ करके मंदिर आया हूं, बहुत कुछ छोड़ करके आया। तो उसको पूछना चाहिए, पहले ये बताओ प्रभु, पहले तुम्हारा था क्या क्या? वो जिसका तुम भेद करके बैठे थे कि ये मेरा है, ये तुमने मान लिया था, वही तुम्हारी आसक्ति ही तो तुम्हारे दुख का कारण थी। तो तुम आसक्ति को छोड़ करके आए हो, और कुछ छोड़ के नहीं आए, कुछ नहीं छोड़ा। यहां पर सभी के सभी क्रिप कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था रुक्मणी उनकी है, लेकिन वो जानते नहीं है सर्वशक्तिशाली कृष्ण क्या सब कुछ है, तो रुक्मणी देवी तो उनकी एक शक्ति है, वो उनकी नहीं हुई, तो शक्तिमान ने अपनी शक्ति को उठा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा राक्षस विवाह कर लिया, किसकी किडनैपिंग कर ली। लेकिन ऐसा भाव उसका होगा जो ये जानेगा सब कुछ भगवान का। रुक्मणी देवी को रुखो माई भी कहते हैं और इसीलिए एक महाराष्ट्र में उत्पन्न होने के कारण रुक्मणी जी की बड़ी पूजा होती है। अगर आप पंडरपुर जाएंगे तो वहां पर विठोबा या फिर विठलनाथ पंडरपुर पंडरीनाथ उनकी पत्नी रुखोमाई रुक्मणी देवी को रुखोमाई कहते हैं। रुखोमाई देवी की बहुत पूजा होती है। तो रुखोमाई की एक लीला मुझे याद आती है। रुखोमाई देवी के कुछ भक्त हैं जो कि पंडरपुर में भगवान की सेवा में हैं, आज तक उनकी सेवा की जाती है, बहुत ही ध्यान मग्न होकर के रात्रि कीर्तन करते हैं। हम लोग हरे कृष्ण गाते हैं, वो लोग गाते हैं राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। आप लोग नहीं बोलेंगे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार का कीर्तन 24 घंटे करते रहते हैं वहां पे भक्त, और बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम करते हैं रुखोमाई विठोबा से। और उनकी इतनी गाथा है, इतनी गाथा है, मेरे कई बार इच्छा होती है विठोबाई रुक्मणी महिमा गान किया जाए, मतलब और करने बैठे ना तो प्रभु जी अगर आदेश दें तो गारंटी से इतनी महिमा है, 10 घंटे प्रभु जी कम से कम बोला जा सकता है, इतनी महिमा है रुक्मणी के भक्तों की और द्वारकाधीश की, बहुत अनेक महिमा, परंतु उसमें से एक महिमा गाने की इच्छा है। तो उसमें वर्णन आता है कि उनके एक सबसे उत्तम भक्त हुए जिनका वर्णन शिल प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में करते हैं, तुकाराम। तो तुकाराम जी ऐसे नहीं है, बोलते हैं ना तुक्के से मिल जाए अगर राम, है ना, तो वैसे वाले तुकाराम नहीं है, वैसे हैं जिनका तुक्का फिट हो गया है भगवान के साथ, है ना, और उन्हें कोई काट नहीं सकता है। ऐसे तुकाराम ग्रस्त जीवन में है, सब कुछ उनके घर में है, लेकिन एक घर है लेकिन कोई काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है तो भगवान का सदा भजन करते रहते हैं जैसे अभी हमने किया, और जिससे मिलते हैं उससे भी भजन करते हैं विनम्रता पूर्वक। अब लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी, लोग लालछन लगाते हैं, ऐसा है पापी है गंदा है, सब सहन करते हैं, सहन करते हुए भजन करना करते रहते हैं। तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे, उनकी पत्नी का नाम था अलवा, उनकी पत्नी कहती है अगर बच्चे हैं हमारे घर में तो क्या आपका कर्तव्य नहीं उठता इनके लिए कुछ कमाई करना, कुछ खाना बनाना, कुछ लाना, आपको जाना चाहिए। कई लोगों से बोलते हैं मुझे भजन करने की बड़ा मन करता है, मुझे भजन की कोई काम दे दो जिसमें भजन में मुझे पैसा मिल जाए। तो लोग बोलते हैं ऐसा कहाँ काम होता है भजन में पैसा मिल जाए, हम तो नहीं दे सकते आपको, सब रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो लोग द्वेषी थे वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करते, भीख मांग लो, भजन करते रहना, भजन से खुश होकर लोग कुछ अठन्नी चवन्नी चढ़ाएंगे उसी से घर चल जाएगा। तो कहते हैं भीख नहीं मांगूंगा, भगवान का भक्त भीख नहीं मांगता, मांगता है तो भगवान के लिए मांगता है लेकिन अपने लिए कभी हाथ नहीं पसारता, वो सच्चा भक्त मर जाएगा लेकिन भगवान की सेवा के लिए तो मांग सकता है, अपने लिए कभी मांगेगा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं मांगूंगा नहीं कुछ भी, कहा ठीक है फिर तुम एक काम करो वहां चले जाओ यहां चले जाओ, बहुत जगह गए कहीं सेवा नहीं मिली। एक व्यक्ति खेती करता था, बहुत बड़े बड़े खेत थे, कहा यहां बैठ करके तुम कीर्तन करना, गाय जानवर पक्षी कोई ना घुस जाए मेरे खेत में, इसका ख्याल रखना। तो रोज बैठ जाते वहां पर, करना क्या है, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे
ऐसे भजन करते थे। पहला दिन हुआ भजन हुआ, आंख खोली आग बंद करके भजन करते थे लीन समाधि में। आंख खोली देखा सब बढ़िया खेत लहरा रहे, मालिक आया खेत का कहता बहुत बढ़िया देख रेख करिए, क्या चाहिए तुमको, ये लो पैसे। कहा पैसे नहीं चाहिए, पैसा लूंगा फिर बाजार जाना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा, प्रपंच में फंसना पड़ेगा। उस दुकानदार से चार बातें होंगी, वो चार चीजें मुझे भौतिक संसार की बोलेगा, मैं चार उसको बोलूंगा पर जलपा होगा, राम भजन छूटेगा। इससे अच्छा है कुछ बना बनाया कुछ हो तो दे दो, बच्चों को खिला दूंगा, एक काम के बदले में पैसा किन लेना सामान दे दो। कहा ठीक है, ये गेहूं ले जाओ और ये गन्ने के खेत की सेवा किए तो गन्ने ले जाओ। गन्ने दे दिए, गेहूं दे दिया, गन्ना और गेहूं लेकर के चल दिए। चले गए, जब पहुंचे अपने घर में तो घर के रास्ते में जा रहे हैं तो क्योंकि सबसे गरीब स्थिति में रहते हैं अपने घर में, मोहल्ले वाले कह रहे हैं वाह आज तो तुकाराम का तुक्का फिट हो गया, बहुत गन्ने मिले बहुत गेहूं मिला। तो सबके सब क्या कर रहे हैं, उनके गन्ने छीन रहे हैं पीछे से, हमें हमें दे दो हमें दे दो। तो एक व्यक्ति है जिसको मालूम है, एक व्यक्ति को मेरे घर में बच्चों ने चार चार दिन से कुछ खाया नहीं है, वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए नहीं ले जा रहा है, वो बांट रहा है गन्ने ले लो ले लो। आखिरी में एक गन्ना बचा, तोड़ करके दो बच्चों को दे दिया, पत्नी अभी भी भूखी है, उसको कहा गेहूं ले लो पीस करके खाना बना लेना। खाना बना लिया, बच्चे खुश हो गए अब तो हमारे घर खाना आने लगा है। उन्होंने घर के सारा कबाड़ा बेच डाला और उसे बेच करके जो फिर रोटी खरीद ली गेहूं खरीद लिया, अब हमारा घर चलने लगा, अब नई चीजें लाएंगे, अब तो हमारे पिताजी काम धंधे वाले हो गए हैं। लेकिन दूसरे दिन जो द्वेषी लोग थे उनसे देखा नहीं गया कि इसका तो बढ़िया चल रहा है, भजन भी कर रहा है घर भी चल रहा है, ऐसा कैसे। तो द्वेषियों को तो पसंद नहीं आता, वो तो चाहते हैं इसका धंधा चौपट हो, इसको तो निकाला जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, गाय बकरी बैल जो भी जानवर थे उनको कई दिनों से भूखा रखा था, उनको खेत में छोड़ दिया, तारों के नीचे से घुसा दिया और उस खेत में छोड़ दिया। और ये तो सुबह सुबह बैठ गए भजन करने, आंख बंद कर ली और गाने लग गए, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हाँ राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। इस प्रकार से भजन कर रहे थे, आंख खोली तो देखा सारा खत्म, खेत पूरा समाप्त हो चुका है, गाय बैल बकरी सब खा चुके हैं, उनके ऊपर रौंद दिया है पूरे खेत को। ऐसी स्थिति में घबरा गए, करूंगा क्या। लेकिन भक्त भगवान के भरोसे बिल्कुल निश्चिंत होकर चुपचाप बैठे रहे। वो आदमी आया, कहा ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें मैं ले चलूंगा मुखियाओं के सामने पंचों के सामने ले जाऊंगा, तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करूंगा तुम्हें याद रखा जाएगा, एक दिन नहीं हुआ तुमको कुछ सामान कमाते हुए आज ही मेरा सारा बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है इस खेत से तकरीबन दो बैलगाड़ी भर करके अनाज आता था, अब कौन भरपाई करेगा इसकी। बहुत बोला उल्टा उल्टा, कहा तुम्हारे पास है क्या जो तुम भरपाई करोगे। तो कहते हैं आप देख लीजिए जो आपका मन हो ले लीजिए मुझसे। अब भक्त फड़ता नहीं है डिफेंडिंग करने में, जो बोल रहे लगा लो लालच, डिफेंड नहीं करूंगा चुपचाप, डिफेंडिंग करेंगे तो पशु हो जाएंगे, ईटिंग मीटिंग डिफेंडिंग, तो वो डिफेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं डिफेंड नहीं करूंगा, जो आप कहेंगे वो ठीक है मंजूर है। घर के पेपर जो होते हैं उनके पिताजी दरदा परदादा का बना हुआ मकान था, मुखियाओं से बोला मेरी खेती खराब कर दी है, मेरा नुकसान हुआ है, मुझे टैक्स भरना होता है, इसका घर बेच करके पैसा दो। तो उन्होंने घर से पेपर जो थे पेपर पे लेटर पे लिखवा लिया, ये अपने साइड बैठ के भजन कर रहे हैं, कहा जब साइन करने हो तो बता देना। साइन करने की जगह अंगूठा लगा करके चले आए। घर आए तो पत्नी को कहते निकलो घर से बाहर चले, तो पत्नी बोलती है अरे पहले कुछ लाना शुरू किया था आज क्या हुआ, आज घर से बाहर ले चल रहे हो, दूसरा घर मिल गया क्या, काम करने ऑफिस वालों ने कुछ दूसरा घर दे दिया। खरे नहीं नहीं दूसरा घर नहीं दिया, जिसका घर था उसने ले लिया। किसका था, विठोबा का, रुको माई का, उन्होंने ले लिया। अब जरूरत नहीं है किसी और चीज की, चलो घर से बाहर। अब घर से बाहर चले गए, पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, पत्नी बच्चे देखे कितने शरणागत हैं, जैसा बोला साथ चले गए, गालियां दे रहे हैं लेकिन साथ जा रहे हैं। हमारे गाली देने लगे हम छोड़ जाएंगे उनको, कहीं गाली दे रहे तुम छोड़ो मैं जा रहा हूं संन्यास लेकर के, लेकिन वो गाली खा करके भी उन्हीं के साथ रह रहे हैं। भजन करने लगे पेड़ के नीचे बैठ करके, इधर भजन कर रहे हैं उधर उसने कहा कि चलो जितना भी खेत बचा हुआ है इसकी कटाई करो, आधी बैलगाड़ी तो आएगा, कुछ तो अनाज आएगा। कटाई करी गई, गन्ने के खेतों की, गेहूं के खेतों की कटाई होने लगी। इधर कटाई करने वाले कटाई करते जा रहे हैं, बीनने वाले बीन रहे हैं, छानने वाले छान रहे हैं, गेहूं के ढेर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना जितना भर लेते हैं उतना उतना उसमें और बढ़ जाता है। जो भरने वाले हैं वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं, कहते हैं जितना भरते हैं उतना और भर जाता है, कौन है ये भरने वाला? आकर के उस मालिक को कहते हैं कि हमें 3 दिन 3 रात हो गई है भरते भरते, लेकिन ये जो पहाड़ है गेहूं का टीला जो आपने बना के, ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, और ऑलरेडी 50 बैलगाड़ी भर चुकी है। हर बार कितनी आती थी? 2, इस बार 50। किसके द्वारा? अब इसको लगता है मुझसे तो गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया एक वैष्णव भक्त के प्रति, मैंने उसको घर से निकाल दिया, ऐसा कर दिया। पछतावा, पछतावा करके पहुंचते उनके घर पे, कहते हैं कि आपके लिए ये 48 बैलगाड़ी आपके हिस्से की है, 2 मेरी है, मैं बेच करके उतने से ही संतुष्ट हूँ, आप अपनी 48 रख लो। तो हैरान हो जाते हैं, बोले मेरी कैसे? कहा वो आपकी कृपा से आया है तो आप ही का हुआ, आपने देखभाल करी थी, मैं पापी था, मैं गलत था। तो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ, नाराज मत हो आप, मैं आपको, आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे सेवा दिया, छोड़ दिया। अब 48 बैलगाड़ी जो है उसके अंदर जो अनाज आया, पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ गया कि यहाँ तो गेहूं आया है, तो भिखारियों की लाइन लग गई, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू हो गए। सारे वहां पर अपना अपना कटोरा लेकर के आ गए, हमें दो हमें दो। तो ये नहीं बोल रहे हैं एक कटोरे में से एक एक गेहूं दूंगा रोज, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। भक्ति करने वाले को कहां पुण्य से मतलब, पुण्य अर्जित करके कहां स्वर्ग के चक्रों में फंसूंगा, मुझे तो चाहिए भक्ति, विठोबा का प्रेम, रुखोमाई का प्रेम, भजन कर रहे हैं अपना, और जो आता जा रहा है उसको कह रहे एक बैलगाड़ी आपकी। कितने लोग आएंगे मुश्किल से? 48 लोग आए, 48 भिखारियों को एक एक बैलगाड़ी, सब लोग एक बैलगाड़ी हाँकते हुए अपने अपने घर ले गए, वो सारे भिखारी तो रईस हो गए, ये वहीं के वहीं। एक बोरी जो स्टार्टिंग में उनकी पत्नी ने उतारी थी उसी को पीसते पीसते गाना ही गा रही थी, रुखो माई तुम्हारी बड़ी कृपा हुई आज हमारे घर अनाज आया है। वो पीस रही हैं, रुक्मणी मैया का गाना गा रही है, रुक्मणी मैया आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आपके कारण मेरे घर लक्ष्मी आई है, उनका भजन गा रही है। बाहर जाकर देखा तो पति देव के इतने दानी भाव से सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो एक भिखारी आता है, कहता है कि माई मैं रह गया, हे बाबा तुकाराम मैं रह गया। कह रहे आप रह गए? ओहो मुझे क्षमा करिए आप रह गए, तो मैं देखता हूं अगर घर में कुछ है। तो क्या था? जो बोरा मैया ने इतनी देर पीसा था कीर्तन कर करके, उसको भी भर के बोरी में कहा ये लो तुम ले जाओ। तो जो इनकी पत्नी थी आलवा, वो कूद पड़ी उस भिखारी के ऊपर, कहती हैं कि सारे संसार के भिखारियों को हमारा ही घर मिला है दान मांगने के लिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि रुक्मणी मैया की बहुत कृपा है, जिसने 48 गाड़ी दी है वो 480 गाड़ी भी देगी, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करती, इतनी आसक्ति रखती है? ये एक भक्त का भाव। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है, सारे राजा चिल्ला रहे हैं रुक्मणी को ले गए, लेकिन वो रो रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं कि सब कुछ किसका है, रुक्मणी का है, कृष्ण का है, और कृष्ण की रुक्मणी ले गए तो ले गए, क्या फर्क पड़ता है इसे। रुक्मणी सभी राजाओं के आक्रमण से घबराई हुई थी, तो भगवान कहते हैं प्रहस्य भगवान आहा मामस्मे भे वामलोचने, हे वामलोचन, हे सुंदर नेत्र वाली क्या करो, तुम डरो मत, है ना, माम समस्म भे, मेरे सामने भय रह नहीं सकता है, तो तुम क्यों घबरा रही हो वामलोचन, हे सुंदर नेत्र वाली क्यों घबरा रही हो, तुम चिंता मत करो, मेरे होने के कारण अब तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। पीछे से जो जरासंध था उसने शिशुपाल को भड़काया, रुक्मी को भड़काया, और कहा रह गया ना किसी काम का नहीं है, ते तेरी बहन को उठा के ले गए। अब जरासंध बड़ा प्रीचिंग कर रहा है, यहां पर प्रचार करता है, कहता है चलो शिशुपाल कोई बात नहीं है, आज उसका दिन है, कल हमारा दिन होगा, ऐसा था कुत्ते का दिन आएगा, वैसा वाला भाव सच रहा है। कह रहा आज उसकी किस्मत थी, कल हम आक्रमण करेंगे, पहले 17 बार मैंने आक्रमण किया, भाग करके द्वारका आ गया था, अब द्वारका में आक्रमण करेंगे, फिर कहां जाएगा? शिशुपाल घबराओ मत, अभी बहुत दूर नहीं है, बाजी हमारी है, ऐसे उसका प्रोत्साहन दे रहा है, प्रारब्ध का प्रीचिंग कर रहा है, मतलब मिस यूज ऑफ फिलोसफी देखा जाए तो यहां है, जरासंध भगवान के खिलाफ शिशुपाल को फिलोसफी सिखा रहा है। तो रुक्मी जो था वो पहुंच गया और भगवान को ललकारने लगा, कहता है ओ कृष्णा उठा लाया मेरी बहन को, रुक जा छोड़ूंगा नहीं, रुक्मणी जो है वो शिशुपाल के लिए है तुम्हारे लिए नहीं है। तो भगवान ने अपने बाणों का सुंदर तरीके से, यहां पर एक होता है ना जब फ्लाइंग होती है तो उसमें एक सुंदर तरीके से ऐसे ऐसे फ्लाइंग करी जाती है नेशनल इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, भगवान ने 8 बाणों से उसके 4 घोड़ों के मुंह को और 1 पैरों को लगा के पूरे पूरे घोड़ों को रोक दिया, 2 बाणों से सारथी को समाप्त किया और रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट कर दिया। 3 बाण से नष्ट करके जब पूरी तरह से वो जमीन पर गिरा तो होता है ना, हार नहीं मानेंगे, तलवार निकाली और भगवान की ओर भागा कि ओ कृष्ण आ मुझसे लड़। भगवान ने कहा अरे लड़ने वड़ने की बात बाद में देखना, अभी तू बचेगा कि नहीं बचेगा ये देख। तो भगवान ने जैसे सुदर्शन को आवाहन करने के लिए उंगली उठाई, रुक्मणी मैया ने पैर पकड़ ली, हे मेरे प्रभु मेरा भाई है, आपकी जो वाम लोचनी है सुंदर नेत्र वाली प्रिया है उसका भाई है, आप भाई के साथ साले साहब के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर सकते हो, छोड़ दो। तो भगवान की उपदा रुक्मणी मैया ने इतनी प्रार्थना करी तो कहते हैं ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा। तो उन्होंने प्रार्थना करते हुए रुक्मणी मैया कहती हैं, योग ईश्वर प्रमे आत्मना देव देवा जगतपते, हे देवताओं के जगत के पालन करने वाले, देवताओं का पालन करने वाले, हंतुम ना अरहसी कल्याणम भ्रातर मे महाभुजा, मेरा महाभुज नाम का जो भ्रातर है भाई है इसको हंतुम ना अरहसी, इसका आप वध मत करो, इसको क्या कर दो कृष्ण बंधन से छोड़ दो। तो भगवान के बंधन से जो छूट जाएगा वो तो वैसे ही गया हुआ है। भगवान ने कहा अच्छा रुक्मणी तुम ये चाहती हो इसको मैं छोड़ दूं, छोड़ दिया, जो छोड़ दिया तो गया। रुक्मणी जी को सोचना चाहिए था भगवान के बंधन में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। और क्या किया, साशुश्रम केशवम प्रपन्नम, उसके जो केश और मूछे थी, बाल लंबे लंबे बाल थे उसके स्टाइल वाले हीरो जॉन अब्राहम जैसे, और मूछे थी तो आधी मूछे काट दी आधे बाल काट दिए, और इस प्रकार से उसको कहा जा अपनी राजधानी वापिस भाग जा। अब वैदर्भ से द्वारका आ गया था लेकिन बोल करके आया था रुक्मी, भीष्मक को बोला अपनी बहन को वापस लेकर आएगा कृष्ण का वध करके, और नहीं आएगा तो वापस नहीं आएगा। भगवान ने कहा मूछे चलेगी बाल चलेगा, बोलो और क्या क्या जाना है, तुम्हारी जान बच गई तुम्हारी बहन के कारण। तो वापस ये जाने लगा, जाता है तो जाए कहां, वापस राजधानी जा नहीं सकता है। तो भोजकंटक नाम का एक स्थान है वहां पर तपस्या करने बैठ जाता है। भोज का मतलब है अपने अनुभव और कंटक का मतलब है व्रत, अपने अनुभवों से सीख करके व्रत करने बैठता है और क्या समझ जाता है कि भाई कृष्ण से जीतना तो मेरे बस की बात नहीं। तो बलराम जी कहते तुमने ये क्या किया, आत्महत्या कर दी उसकी, उसका मर्डर कर दिया, एक व्यक्ति के आधे बाल काट दो आधे मूछें काट दो तो उसका मर्डर करने से अधिक हो गया, उसकी जान ले लेते फिर भी उसका होता अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों होता, लेकिन आपने तो कुछ और ही किया। तो इसी प्रकार से मायावादी भी रुक्मी जैसे हैं, टीचिंग नंबर 7 है आज की। वो भगवान को क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। देयर इज नो गॉड, यहां पर कोई भगवान भगवान नाम की चीज नहीं, कृष्ण नाम के भगवान तो कभी हुए, लेकिन ऐसे लोगों को कहां रहना पड़ेगा, भोज कंटक में रहना पड़ेगा, अपने अनुभवों से सीखेंगे और ना ही भगवत धाम रहेंगे ना ही पृथ्वी पर भगवान की सेवा में रहेंगे, बीच में किसी नरक स्थान पर बैठकर तपस्या करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा कब वो मनुष्य शरीर मिले और वापस भगवान की सेवा में आरोप हो पाए। तो जैसे रुक्मी भोजकंटक में अटक गया था, ऐसे मायावादी जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं वो अटक जाएंगे भोजकंटक जैसे स्थान पर। रुक्मणी का विवाह होकर के आया, द्वारकाधीश ठिठोली करने लग गए, उनके साथ मजाक करने लग जाते हैं, कहते हैं ए रुक्मणी तुमने मुझ में क्या देखा जो कि इतने सारे राजाओं को छोड़कर के तुमने मुझसे आवाहन किया, मुझे पत्र लिखा, मुझ में ऐसा क्या है, मेरे अंदर सारे तो दुर्गुण है, तुम देखो मैंने समुद्र में छुप करके तो स्थान पाया है, शत्रुता बलवानों से मैंने मोल ले ली, किसी भी दिन मेरा फिरौती निकल जाएगी, मेरा निकाल ले जाएगा भाई इसको उड़ा दो, इतने सारे मैंने अगेंस्ट कर रखे हैं, मेरे कार्य अनिश्चित है, मैं कल क्या करूंगा ये मुझको भी नहीं पता होता, मेरा मूड आता है मैं चल देता हूं, मैं बलराम को सेना को छोड़ के चला गया तुम्हें लेने अकेला, अनिश्चित जिसके कार्य हो जिसकी प्लानिंग ही एकदम थर्ड क्लास हो उस व्यक्ति से तुमने शादी कर ली, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पूजन भी वही करते हैं बेचारे ब्रह्मचारी भक्त जिनके पास कुछ होता नहीं देने दाने के, बेचारे भीखी मांगते थे मंदिर के लिए, वही पूजन करते मेरा, कौन से राजा का भी पूजन करते देखे मेरे तुमने, ऐसे बोल। कहां तुम उत्तम, कहां मैं अधम, मेरे साथ तुमने विवाह किया। और मेरा यशोगान भी कौन करते हैं, भिक्षुक जो होते हैं रस्ते रस्ते भीख मांगते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। तुम मुझे बताओ, इतने सारे राजाओं को छोड़कर तुमने मुझे चुना तो चुना क्यों। ये सुनकर रुक्मिणी मैया की आंखें लाल लाल हो जाती है, इतने प्रेम से उठा के लेके आए, लव मैरिज क्या, मैंने सोचा था कुछ होगा बढ़िया सा, लेकिन ये क्या, ये तो ऐसा क्लेम कर दिया, ब्लेमिंग गेम करने लग गया आते। तो देखते ही रुक्मिणी मैया से तो सहा नहीं गया, तो वो क्या कर गई, बेहोश होकर गिर गई। जैसे बेहोश होने लगी तो जमीन पर ना गिर जाए, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर दो हाथों से रुक्मिणी मैया को पकड़ लिया, और ऊपर के एक हाथ से पंखा व्यजन सेवा, एक हाथ से चंवर सेवा करने लग गए। ऐसे करके रुक्मिणी मैया की सेवा, रुक्मिणी मैया पड़ी। जब कुछ थोड़ी देर बाद पंखा लगा, हवा लगी, उठ करके बैठी, कहा अरे रुक्मिणी तुम बेहोश हो गई, क्या हुआ। तो रुक्मिणी मैया उनके हर एक प्रश्न का उत्तर देती है, कहती है आपने प्रभु मुझसे पूछा कि मैंने आपको क्यों चुना, आपको कौन नहीं चुनना चाहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो आपके पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, विष्णु जी आपके भजन करते हैं, विष्णु आपके अंश हैं, स्वयं प्रकाशित हैं आपसे, तो सब आप ही को प्रेम करते हैं, आप ही के पास आना चाहते हैं, और कहां मैं संसारी गुण वाली, तो क्यों ना चुनूं, मुझसे ऊपर तो ब्रह्मा है। वो कहते हैं ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो मैं तो उससे तो नीचे हूं संसारी गुणों वाली, तो मैं क्यों नहीं भगवान का भजन करूंगी, आपको क्यों नहीं चुनूंगी। आपने कहा कि आपने समुद्र के अंदर द्वारका में पानी के नीचे जाकर महल बनाया है, तो हाँ प्रभु आप तो सभी के पानी के अंदर जाके महल बनाते हैं, जब ब्रह्मांड बनता है तो गर्भोदक सागर में महल बनाते हैं, तभी ब्रह्मांड चलता है। जब परमात्मा, जब शरीर जीवात्मा किसी शरीर को धारण करती है, तो उसमें परमात्मा रूप में शिरोदक्षाई रूप में आकर के आप क्या करते हैं, शरीर के हृदय रूपी जल के अंदर आप विराजमान होते हैं, तो आप तो सदा से ही जल में रहते हैं, आप कहां कहां तक कहेंगे कि आपने जल में, आप तो आपका तो घर ही जल है, आप सदा ही जल के अंदर रहते हैं, या तो प्रेम जल में रहते हैं, या द्वारका जल में रहते हैं, या गर्भोदक जल में रहते हैं, या शिरोदक्षा या फिर करुणोदक्षाई जल में रहते हैं, आप तो सदा ही जल, तो आप कहां भाग करके जल में, आपने कहा आपको जहां घुमाएंगे दृष्टि वहां जल में रहते, जलमग्न भगवान है आप। फिर भगवान कहते सुनने लगते हैं, और बलवानों से शत्रुता मोल ली, अरे आप तो बलवानों से शत्रुता मोल लेने की शक्ति प्रदान करते हैं, जितने भी मायावादी अपने आप को बलवान बनते हैं, जितनी भी माया बलवान बनती है, उनके खिलाफ लड़ने की शक्ति भी तो आप ही देते हैं, परमात्मा रूप में आप अंदर बैठकर हमें शक्ति देते हैं कि कैसे हम इन मायावादी विचार विचारकों से लड़े और शुद्धिकरण करके आपकी सेवा में लगे, तो आप ही तो शक्ति देते हैं। फिर भगवान चुप हो जाते हैं, आपने कहा आपका कोई कार्य निश्चित नहीं है। हाँ निश्चित कैसे होगा, निश्चित तो उसका होता है जो इन्हीं भौतिक गुणों में होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो त्रिगुणातीत है, त्रियुगी है, वो व्यक्ति का कैसे कोई भी काम तीनों गुणों में बंधा हुआ होगा, पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, अरे भैया ये सोच भी आती है कि प्लानिंग करनी है, वो सोच आपसे आती है, तो आपको प्लानिंग की जरूरत है क्या, आपका तो हर काम अनिश्चित है, ब्रह्मांड की रचना भी आपसे कैसे होती है, सोते रहते हो जल के ऊपर, रोम कूप से सांस लेते रहते हो, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निकलते रहते, कोई प्लानिंग करके निकलते हैं कि नहीं मुझे 10 इधर निकालने हैं, 15 इधर निकालने हैं, अनिश्चित रूप से आपसे सारे कार्य होते हैं, क्योंकि आप जो निश्चित है वो भी आपसे उत्पन्न होता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं आपसे काम अनिश्चित है। आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरा भजन भी वही करते हैं जिनके पास पूजने के लिए कुछ नहीं है, प्रभु आपके पास कुछ हो भी कैसे सकता है। अब मैं कहूं कि ये जल इस ग्लास के अंदर है, तो ये तो ग्लास के अंदर जल है, अब ग्लास के बाहर, ग्लास ने जल को, ग्लास के पास में कोई जल बाहर नहीं है, इस तरह से पूरा ब्रह्मांड अगर देखें, आपका विराट रूप देखें, यूनिवर्सल फॉर्म, तो पूरा का पूरा विराट जगत जो है वो आप ही के अंदर, आप उसके आपके ही अंदर है वो पूरा का पूरा, नाड़ियां नदियां हैं, पैर रोंगटे पेड़ है, पूरा शरीर आपका ब्रह्मांड है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आप में नहीं है। हाँ सच बात है, आप में कुछ नहीं है, क्योंकि आप में सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है उसका कुछ नहीं है। और हाँ जिनके पास कुछ नहीं होता वो आपका भजन करते हैं, क्योंकि जो आपका भजन करते हैं वो निष्किंचन हो जाते हैं, किंचित मतलब होता है कुछ हो, निष्किंचन मतलब जिनके पास कुछ ना हो, जिनके पास भौतिक रूप से पाने के लिए कुछ नहीं रह जाता, हाँ वही आपका भजन करते हैं, जिनके पास भौतिक रूप से पाने के लिए कुछ रहता है वो कभी आपका भजन नहीं करते। आपने कहा आप उत्तम हैं, और अधम का एक समान नहीं होना चाहिए। सच बात है, आप उत्तम हैं और मैं अधम हूं। आप उत्तम हैं क्योंकि आप भगवान हैं, मैं अधम हूं क्योंकि मैं आपकी सेविका हूं, मैं आपके दास हूं। तो हमारा कभी मेल नहीं हो सकता है। मेरा यशोगान तो भिक्षुक ही गाते हैं, आपने ऐसा कहा। हाँ प्रभु, आपका यशोगान भिक्षुक ही गाते हैं, क्योंकि वो भिक्षुक जो मधुकरी करके अपना जीवन चलाते हैं, जिनकी भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, वही आपका भजन करते हैं। और मैंने आपको क्यों चुना? मैंने आपको इतने राजाओं के अंदर इसलिए चुना क्योंकि देवता भी हो, राक्षस भी हो, यहां तक कि इंद्र आदि देवता भी हो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो काल के वशीभूत ना हो, जिसको काल समाप्त नहीं कर सकता हो। और आप कहते हैं भगवद गीता में, कालो अस्मि, मैं काल हूं। जब काल ही आपसे उत्पन्न होता है तो मैं काल के काल में जाने वाले लोगों को क्यों चुनूं? मैं उसको क्यों ना चुनूं जिससे काल स्वयं प्रकट होता है? इसलिए हे प्रभु द्वारकाधीश, मैंने आपको चुना है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, ना त्वदृश्यं प्राणिनं गृहिणां गृहेषु पश्यामि मानिनाय स्वविवाह काले। हे रुक्मिणी, प्राणिनियम, प्रेम करने वालों में से गृहिणी गृहेषु, मेरी जितनी भी गृहिणियां हैं ग्रह इस ग्रह के अंदर, उन सभी में से आप कैसी हो? पश्यामि मननी यव स्वविवाह काले, मेरे विवाह काल जितने भी हुए हैं या होंगे उन सब में से आप कैसी हो? तद दृश्यम, आपसे ज्यादा उत्तम कोई भी नहीं होगा। ऐसा करके रुक्मिणी जी को जब उन्होंने कहा कि आपसे उत्तम कोई भी नहीं होगा, तो यह बात सत्यभामा को अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि ये भगवान का रोज का श्लोक बन गया, रोज उनका वर्णन करते हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है रुक्मिणी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। द्वारका वाले भी मेरा ही नाम गाते हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, कभी नहीं गाते जय रुक्मिणी, जय द्वारकाधीश सत्यभामा, जय द्वारकाधीश सत्यभामा, कभी नहीं गाते। 16,108 पत्नियों में से तुम सबसे प्रिया हो। प्राणी नियम, जितने भी प्राणों से प्यारी हैं, उन सब में से गृहिणी नाम गृहेषु, इन घर में रहने वाली गृहिणी आप ही हैं। ऐसे करके उनको बोला तो सत्यभामा सोचती रहती थी लेकिन कभी बोल नहीं पाई। होता है ना, हमारे मन में कई बार नेगेटिव चलते हैं, लेकिन एक कोई हमको चाहिए मंथरा टाइप की, जो केकई में चलने वाले भावों को और प्रगाढ़ कर सके। तो मंथरा टाइप का कार्य करने के लिए कोई चाहिए था, उत्तेजना करने के लिए, परंतु यहां पर काम मंथरा ने नहीं किया, यहां पर काम नारद मुनि ने किया। देखा जाए तो मंथरा की भी कोई गलती नहीं थी, रामायण के अंदर केकई को उत्तेजना देने वाली मंथरा थी, लेकिन मंथरा को उत्तेजना देने वाला कौन था? सारे के सारे देवता चले गए भगवान के पास, बोलते हैं भगवान तो यहां जाकर के अयोध्या पति बनकर बड़े आनंद मग्न है, आज अभिषेक होने वाला है, राज अभिषेक, और ये बैठे हैं राजा बनने के लिए। रावण कैसे मरेगा? जिसके लिए उत्पन्न हुए थे उसको मारेगा कौन? और कहते हैं कि मैं तो राक्षसों को मारने के लिए जन्म लेता हूं, रावण को कौन मारेगा, कुंभकर्ण को कौन मारेगा, अहिल्या का उद्धार कौन करेगा? प्रभु क्या कर रहे हैं? राजा बन के बैठ जाएंगे, सब तो जंगलों में घूम रहे। तो सरस्वती मैया की सेवा दी गई, सारे राजाओं ब्रह्मा जी ने सबने इकट्ठे होकर सरस्वती मैया के पास, मैया आपकी सेवा है, मंत्रा की जिह्वा पे बैठना है और फिर केकई से बुलवाना है। तो सरस्वती मैया कहती है प्राण जाएंगे, ऐसी सेवा नहीं करूंगी, कभी ऐसी सेवा नहीं करूंगी जहां पर मेरे प्रभु राम को तकलीफ हो, कांटों पर चलना पड़े, ना ये सेवा मंजूर नहीं है, कुछ और दे दो, झाड़ू पोछा लगवा लो अयोध्या में, ये सेवा नहीं करूंगी। कहा रे भगवान निकलेंगे, 14 वर्ष जाएंगे, वन को जाएंगे तभी तो राम कहलाएंगे, अगर वन नहीं जाते तो कौन उनको राम कहता, राज करके अब समाप्त तो साकेत चले जाते। हम जितने भी कथा करते हैं रामायण की, जहां हो रही ब्रह्मांड है, वो 14 वर्ष का गाया नहीं गाया जाता है, राम वन को गए इसलिए राम बन गए, है ना, क्योंकि वनवास की लीलाएं अधिक उत्तम है, रावण का वध, कुंभकर्ण का वध, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सारे कांड वहीं से उत्पन्न। इस सारे रामायण का स्थापना कहां से होगी? आप ही से सरस्वती मैया होगी। सरस्वती मैया बोली ठीक है, आप लोगों ने सेवा दी तो जाती है, फिर वो मंत्रा की जिह्वा पे बैठती है, उसका दिमाग पलटती है, फिर केकई को पलटवाती है, और फिर दशरथ से। इसी प्रकार से यह नारद मुनि आते हैं, कहते सत्यभामा आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो है वो ज्यादा सुंदर है, यंग है, रुक्मिणी मैया भी पुरानी हो गई है, तो आपको ज्यादा प्रेम करना चाहिए। पर मैं देखता हूं हमेशा एक ही श्लोक गाते रहते हैं, प्राणिनियम ग्रहणी ग्रहणी नाम ग्रहेशु, मेरे ग्रह में तुम ही एक गृहिणी हो, तुम ही एक गृहिणी हो, आपको क्या ग्रहण लगा है जो आपको प्यार नहीं करते? तो बोली हे नारद मुनि, आप ही बताइए ना ऐसा क्या करूं कि मेरे हृदय के प्राण बन जाए। कहा देखो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना जीवन में, तब फिर वो हमारा ऋणी हो जाता है। कहा क्या करूं मैं, कृष्ण का तो सब कुछ ही है, उनका कौन ऋणी होगा, उनका वो काहे के लिए ऋणी होंगे हमारे। कहे काम करो, आपसे मैं दान मांगता हूं, आप मुझे दान में कृष्ण को दे दो मेरा सेवक बना के। जब कृष्ण मेरे सेवक बन जाएंगे तो फिर बाद में आप कहना सत्यभामा, अरे कृष्ण को आपने ले लिया सेवक बना करके, मैं नहीं से अभी जाने नहीं दूंगी मैं कृष्ण को। और फिर कृष्ण को आप अपने धन से वापस ले लेना। जब आप वापस लोगी तो सारी रानियों का मुंह छोटा हो जाएगा। देखा सत्यभामा के पास 17 जीत अपने पिता की समय तक मड़ी है, जिसके कारण इतना सोना आता है कि आज वो जीत गई सारी रानियों से। सत्यभामा ने दे दिया नारद मुनि को, अभी नारद मुनि ने ले लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कृष्ण मेरे हो गए, कृष्ण मेरे हो गए, कृष्ण मेरे हो गए। तो सत्यभामा, सारी रुक्मणी, कालिंदी, सभी मित्र वृंदा सब बाहर निकल आई। बोली क्या हो गया, क्या हो गया, इतना शोर मचा रहे। कहा कृष्ण मेरे हो गए। बोले हाँ कृष्ण तो सबके, वैसे नहीं मेरे सेवक हो गए। अरे हाँ मैंने दे लिया, सत्यभामा ने मुझे दान में दिया। क्या सत्यभामा कैसे दे दिया तुमने, कृष्ण अकेले तुम्हारे थोड़ी है। कहा चिंता मत करो, मैंने भ्रम में दे दिया था, मैं तुरंत ही अपने धन से इनको वापस ले लूंगी। तो एक तुला मंगाओ, तराजू मंगाओ, तराजू पे कृष्ण बैठेंगे, जितना उनका वजन है उतने वजन का सोना दूंगी। नारद मुनि ने कहा है धन दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा ठीक है। तो कृष्ण को एक तुला पे बिठाया गया तराजू के किनारे, और एक किनारे पे सारा का सारा धन एक एक करके, सम्यक्तक मणि से जितना द्वारका में धन था सब सत्यभामा के महल से निकल निकल के तराजू पे लोड होने लगा। इधर धन लोड होता जा रहा, लोड होता, उधर कृष्ण जमीन में बैठे हुए। सारी रानियां बोली अरे कृष्ण तो चले गए। नारद मुनि ताली बजा के कहते हैं अब मजा आएगा, कृष्ण से पैर दबवाऊंगा, सेवक बना लिया। अब कृष्ण अंदर से ड्रामा कर रहे हैं, अरे बचा लो ना मेरी पत्नियों, तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया है, मुझे बचा लो। अभी तुम गृहस्थ जीवन दिखा रहे भगवान, एकदम सुंदर लीला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो ना सत्यभामा कर चिंता मत करो प्राणनाथ, रुक्मणी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे धन से आप बच जाओगे, मेरे धन से आप बच जाओ। धन पे धन, धन पे धन लोड हो रहा है। सारी रानियां कहती हैं अगर तुम पे कमी पड़े तो हमारा मंगल सूत्र ले लो। मंगल सूत्र चढ़ा दिया, कड़े चढ़ा दिए, सब चढ़ा दिया, फिर भी कृष्ण जमीन में है। नारद मुनि कह रहे देखो अगर नहीं उठ पाए ना, धन भी ले जाऊंगा, कृष्ण को भी ले जाऊंगा। है ना सत्यभामा का उदास चेहरा हो गया। रुक्मणी मैया से कहा आप सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे पहले विवाह करके आई थी द्वारका में, है ना, तो आप कुछ बताएं। मैया कहती है ठीक है मैं कुछ चढ़ा देती हूँ। तो वो एक तुलसी का पत्र तोड़ती है और धन के ऊपर चढ़ा देती है। जैसे ही चढ़ाती है पूरा का पूरा धन का लौट नीचे जाता है, कृष्ण ऊपर चले जाते हैं। तो है ना सत्यभामा कहती है हाँ ये बड़ी, कृष्ण को ऊपर चढ़ा दिया, उस एक ग्राम आधा ग्राम का पत्ता चढ़ा दिया तो उसमें कृष्ण ऊपर चले गए। वो आधा ग्राम ही तो था जो मिस था, उसकी जगह अगर अंगूठी रख देते तो भी चले जाते। तो है ना नारद मुनि कहते हैं अगर ऐसा भावना है ना सत्यभामा, तो आज प्रूफ कर दो तुम, आज ना सारा का सारा धन हटा दो, देखें इस रुक्मणी के तुलसी के पत्ते से अगर भगवान ऊपर रहते धम से नीचे गिरेंगे, सबकी बेइज्जती हो जाएगी पूरे सरेआम। कहा ये बात तो ठीक है। तो उन्होंने तुरंत सारा धन निकालना शुरू कर दिया, सभी माताओं ने अपना अपना धन निकाल लिया, तुलसी का पत्ता पड़ा रह गया, लेकिन खाली एक तुलसी के पत्ते से कृष्ण ऊपर लटके रहे। तो कृष्ण ऊपर रहे तो सत्यभामा अब उदास हो गई। बोले रुक्मणी ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्या तरीका है, ये मुझे भी बताओ कौन सा प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि जब आप दान दे रही थे, जब आप चढ़ा रहे थे, तो इसके पीछे अपनत्व की भावना थी, मैं अपना कृष्ण को दे रही हूं, लेकिन जब तुलसी मैंने कृष्ण के चरणों में चढ़ाई तो ये सोच के चढ़ाई कृष्णाय तुलसाय कृष्ण प्रियसी। तुलसी कौन है, कृष्ण की प्रियसी है, और उनकी प्रिया होने के कारण मैंने उनके चरणों में डिवोशन प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक इसको चढ़ाया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रियच्छति। जो भक्ति पूर्वक चढ़ाएगा, तो भगवान को धन चाहिए, क्या चाहिए, भाव, लेकिन हमें मंदिर बनाने के लिए धन भी चाहिए, लेकिन वो धन के पीछे अपनत्व का भाव नहीं हो तो उसका ज्यादा फल मिलता है। हमको अपनत्व की भावना कि ये मेरा, मैं कृष्ण को दे रही हूं या दे रहा हूं, ये भावना जिसकी होती है वो उत्तम भावना नहीं है। तो इसी प्रकार से सत्यभामा को अपना वो देखना पड़ा, ऐसा स्थिति आई जहां पर वो समझ गई कि हाँ रुक्मणी की जो भक्ति है वो श्रेष्ठ है। तो रुक्मणी मैया की जो भक्ति है, हम प्रार्थना करेंगे रुक्मणी मैया से कि ऐसी भक्ति हम सबके अंदर आए, जो हम चीजों के प्रति, संसार के प्रपंच के प्रति ना आकर्षित होकर के सही मायने में भक्ति से आकर्षित हो, तो लक्ष्मी मैया है वो आपको सब कुछ दे सकती हैं। आज उनका जन्मदिन है, हम कुछ भी मांगेंगे वो हमको प्रदान करेंगी, है ना। रुक्मणी मैया और सत्यभामा जो थी, इन दोनों का इस लीला के बाद ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया कि दोनों की दोनों साथ साथ रहने लग गई। सत्यभामा उनके महल में सेवा करती, वो उनके महल में आती जाती, और दोनों क्या देखती हैं कि जब कृष्ण सो जाते हैं तो कई बार सोते सोते उनके मुख से न रुक्मिणी का नाम निकलता है न सत्यभामा का, उनके मुख से निकलता है क्या, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। तो हैरान हो जाती है, हाँ वो द्रौपदी जिसकी जुबान तक तो कंट्रोल में नहीं है, उस जुबान के कारण तो इतना बड़ा महाभारत हुआ, अंधे का पुत्र अंधा। अगर उसने वाचो वेगम ही कर लिया होता उपदेशामृत का पहला श्लोक, तो इतना बड़ा महाभारत ही क्यों उत्पन्न होता। तुम वाचो वेगम नहीं कर पाए, और उसको रात को कृष्ण द्रौपदी द्रौपदी करते हैं। तो सुबह उठकर पूछा, अजी एक बात बताओ, आप ये सुबह रात को द्रौपदी द्रौपदी क्यों करते हो। कहा, द्रौपदी इसलिए करता हूं क्योंकि द्रौपदी के समान कोई भक्त नहीं। कहा, अच्छा कैसे। कहा, वो मुझे भाई मानती है, गुरु मानती है, वो मुझे अपना सब कुछ परम पिता मानती है, सब कुछ मानती है। तो दोनों बड़ी परेशान हो गई। कहा, नहीं नहीं इस बात का निर्णय तो क्या करेंगे, वहीं जाकर के द्रौपदी के पास जाकर के पूछेंगे। तो अर्जुन और द्रौपदी आए हुए थे महल में, तो द्रौपदी के चैम्बर में घुसे और द्रौपदी के महल में जाकर के उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि कृष्ण रात को आपका नाम उच्चारण करते हैं, अर्जुन का नाम उच्चारण करते हैं, अर्जुन और आप कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, सब क्या चल रहा है, कौन सा प्रेम है, कौन से लेवल की भक्ति है। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप बताइए आप कृष्ण के लिए क्या सोचती हैं। तो यहां पर दो वाक्यों में इस लीला को पूर्ण किया गया। पहली चीज रुक्मणी और सत्यभामा ने बोला, रुक्मणी कहती है, हाँ हाँ कृष्ण के साथ क्या और क्या, कृष्ण हमारे हैं, हमारा सब कुछ है, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। दोनों ये बोलने लगे, तो इसका मतलब हम कृष्ण के हैं। तो द्रौपदी से पूछा, और आप क्या समझती हैं कृष्ण के बारे में। तो कहा, मैं ये समझती हूं कि मैं कृष्ण की हूं, मैं ये समझती हूं कि मैं कृष्ण की हूं, मेरा सब कुछ जो मेरे पास है, जो भी मैं कुछ हूं, मेरी सांसें, मेरा तन, मेरा शरीर, ये सब कुछ कृष्ण का। अभी दोनों चीजों में डिफरेंस है। एक व्यक्ति कह रहा है कृष्ण मेरे हैं, एक कह रहा है मैं कृष्ण का। तो ये लीला से द्रौपदी मैया ने रुक्मिणी और सत्यभामा की लीला से शिक्षा दी कि हम व्यक्ति को भगवान के प्रतिनिधि, अपने गुरु के प्रति कैसे शरणागत होना चाहिए कि गुरु हमारे हैं। बोलते ना ये हमारे गुरुदेव हैं, कई लोग बोलते हैं हमने गुरु धारण कर रखे हैं, हमने गुरु बनाए हैं। एक व्यक्ति बोल रहा था हमने गुरु बनाए हैं। मैंने कहा, अरे तुझे तो गुरु ने बना डाला, गुरु को क्या बनाएगा, गुरु तो बने बनाए होते हैं, गुरु हमको बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं हमने गुरु बनाए हैं, गुरु को बना डाला हमने, लेकिन इस भाव से वो कभी भक्ति भी नहीं शुरू कर पाएंगे। हम गुरु को नहीं बनाते हैं, गुरु हमें बनाते हैं। इसलिए गुरु हमारे नहीं है, हम गुरु के हैं। जब ये भावना होती है कि मैं आपका हूं, तब शरणागति का लक्षण है। और जब लगता है ये मेरे हैं, तो ये भावना रहती है, अच्छा ये तो मेरे सेवक हैं, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी। द्रौपदी के लिए आए थे साड़ी देने के लिए, अर्जुन के सारथी बने थे, तुकाराम के लिए अन्न लेके आए थे, क्या मेरे लिए नहीं आएंगे, मेरे हैं सेवा करो। लेकिन जहां होती है कि मैं आपका हूं, वहां नो क्वेश्चन नो आंसर ओनली सरेंडर, वहां सिर्फ शरणागति होती है। तो इस प्रकार से द्रौपदी की इस लीला से रुक्मिणी मैया ने सीखा कि व्यक्ति को कैसे शरणागति करनी चाहिए। तो ओवरऑल आज हम प्रार्थना करेंगे, और भी अनेकों लीलाएं हैं पर समय अधिक हो गया है, तो मैं समाप्त करूंगा कि कैसे हम रुक्मिणी मैया के जीवन चरित्र से शिक्षाएं ले सकते हैं कि कैसे भक्ति की जाए, कैसे द्रौपदी सत्यभामा से सीख सकते हैं कि द्वारका में रहना है तो कैसे रहना है। हम सब भी द्वारका में रहते हैं, तो कैसे रहना है ये हम सबको द्रौपदी मैया से सीखना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल आनंद नहीं आया, आपका आज का उत्साह मैंने समाप्त किया, उसके लिए क्षमा करिएगा, त्रुटियों के लिए भी क्षमा करिए, और विशेषकर प्रभु जी से क्षमा मांगूंगा। आपने गलत आयोजन नियुक्त किया, तो गलत तो सुनना ही था, तो आप अगली बार आप ऐसी गलती मत करिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
और ये शिव जी और पार्वती के मंदिर में जाकर वहां पर भाव का पाठ करते थे। तो ये 60वां चैप्टर है, अब जो बात करते हैं उसमें आपके उपमान का जो क्या नाम 59 चैप्टर फिर 60 चैप्टर से वो मान रहा है 61 चैप्टर से वो कह रहा है 62 चैप्टर से तो एक बार ऐसे चैप्टर है जो कि आपने बताया कि सरकार से कृष्णा प्लीज इस रूप में ही इधर कॉपी भी उसे भी करा है इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं जाओ उनसे शादी कर लो कोई दिक्कत नहीं है खराब 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 कर लेंगे आप लोग सारे तो अभी और धर्म है और फिर जिस तरह से दो दो भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं उनकी उनकी निंदाओं में भगवान की ग्लोरी बनाती है तो ये चैप्टर नमोदी जी ने बताया और गोपाल बता दे कि ओके सिक्सटी चैप्टर हो गया है कल हम सिक्सटी फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो चले गए तो वापस आए अगले दिन आए तो अगले दिन था वो गोपाल जो था वो सिक्सटी के पहले लगा यानी कि आज फिर से सिक्सटी करना है ये भूपाल जो है ये आगे होता है पीछे कैसे आ गया बहुत सारे गलती सुधर गया उन्होंने दरवाजे के छेद से लिखा कि वहां पर पार्वती और शिव जी हैं तो पार्वती जो है वो भागवत भोगी है भागवत में से जो कृष्णा की सी रूपिणी वाला चैप्टर है उसमें गोपाल भी लगाएंगे तो वो भी शिव जी ने नंबूदरी कितना अच्छा बताता नहीं है चैप्टर इतना अच्छा बताता है मेरा तो मन ही भरता है इसके मैं रोज उसका गोपाल 61 चैप्टर से दोबारा 60 पे कर देती हूं कि दोबारा ऐसे मैं भूल जाता हूं सुनी हां भरता तो कौन सा है तरीके तो मुझे बता दिया मैं तो उस वाले को कह रही मां बोलूं शिव जी जो उनका जो आर्गुमेंट है उसको लगा कि आपने बोला बिल्कुल सही बोला ये तो आपने बोला ये भी आपने बोला सही बोला आपने बोला कि आपने बड़ा राष्ट्र बता कि हाँ आपने बिल्कुल बड़ा राष्ट्र बता ये क्या बड़ा राष्ट्र पर ही होगा तो जरा पेज इस तरह का एक ही जगह सारा हमारे प्रेस में सब लिख रहा है पेज भी यू आर आवर नंबूदरी हमारे नंबूदरी है प्रशांत प्रभु जी